الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس دن میں ہمارے لیے بہت سی خیر اور برکت ہو، اور جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور جوائن کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سارے سفر کو طے کرنا ان کے لیے آسان ہو. آئیے کنٹینیو کریں گے آج ہم دوسرے پارے کی آیت نمبر 221 سے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سوره البقره ایت نمبر 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سورة البقرة کا یہ حصہ گھریلو اور آئلی قوانین سے متعلق ہے. ہم نے آیت نمبر 177، جس کو آیت بر سے موسوم کیا جاتا ہے، اس میں نیکی کی مختلف اقسام دیکھی تھی، اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ انسان کی زندگی میں اللہ کا دین آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ زندگی کے چھوٹے بڑے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی نہ لے. سورۃ بقرہ میں ابھی تک ہم نے جو چیزیں لیں، اب یہاں سے گھریلو زندگی، گھر، کیونکہ گھر اسلام کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز ہے. دیکھیے، گھر میں رہنے والے ہی تو باہر امت بن کر نظر آئیں گے. تو لہٰذا یہاں آپ کچھ ایسے مسائل بھی پیش کیے جائیں گے کہ جو سننے میں ایک دم لگتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب اور ان باتوں کی ضرورت کیا تھی. اور بعض دفعہ جب کچھ نجی چیزیں سامنے آتی ہیں تو لوگ کچھ اور بھی پریشان ہونے لگتے ہیں. تو اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو باہر کی دنیا میں سکون کہاں سے آئیں گے. ایک جم لکھے گا، گھر سے سکون لیں گے، باہر والوں کو دیں گے. کوئی مرد گھر سے پرسکون سوچ کے ساتھ نکلتا ہے تو اپنے کام بڑے پرسکون طریقے سے کرتا ہے. یہی معاملہ خواتین اور بچوں کا بھی ہے. لیکن جب گھروں میں ہی بے سکونی ہو تو پھر دین کے کام کیا، نماز بھی صحیح نہیں پڑھی جاتی. تو اب ہم جو حصہ کریں گے وہ کیا ہے؟ نکاح اور طلاق کے مسائل، نکاح کے احکامات، کس سے کرنا ہے کس سے نہیں. اشارتاً بات ادھر ہوگی، ڈیٹیلز اس کی صورت نساء میں آئیں گی. پھر طلاق جیسے ناخوشگوار معاملے میں بھی خوبصورت ہدایات. وہ دین کتنا خوبصورت دین ہوگا کہ دو بچھڑنے والوں یا دو جھگڑنے والوں کو یہ کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے معاملہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لینا ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پھر دین کی عمومی ہدایات کتنی عمدہ ہوں گی، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ عموماً پچھلی سب باتیں جو بڑی خوشی اور محبت کی تھی وہ بھول چکی ہوتی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بھی بدمزہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور شرک کرنے والی عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو. اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. کچھ لوگوں کو یہ حکم اچھا نہیں لگتا، لیکن بات اتنی ہے، شوہر بیوی کے بیچ میں اگر ذہنی مماثلت نہ ہو تو جسمانی قربت تو چھوڑ دیجئے، انسان ایک چھت کے نیچے رہ نہیں سکتا. جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کف ہوتا ہے اور ذہنی سوچ ملتی ہے، ترجیحات ملتی ہیں، پسند اور ناپسند کا معیار ملتا ہے، عبادت کے طریقے ملتے ہیں، تو اس جوڑے میں محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ کر اصل میں گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیا. اسی طرح فرمایا کہ ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور وہ آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کیا پتہ چلا کہ شوہر بیوی کا تعلق بڑا خوبصورت تعلق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ اٹھے اس کو سامنے رکھ دیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی کر دیں کہ جس کو اگر ماں باپ رشتے کرتے وقت سامنے رکھ لے تو بعد میں نہ تو بیٹیوں کو مشکل ہو اور نہ لڑکے مشکل میں پڑے. तो लिहाजा निकाह करते वक्त रिश्ते का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो मशरक लफ्ज़ आया है, लेकिन इसी तरह से मुसलमान लड़का या लड़की भी जब आप पसंद करें तो ये भी देखिए कि उसकी नमाजें और रोज़े और उसके पेट में जो रिस्क जाता है वो क्या है, क्योंकि याद रखिए कि गलत बुनियादों पर सही इमारत नहीं खड़ी होगी। उम्मत मुस्लिमा में घर और घर वाले बड़े अहम होते हैं, तो लिहाजा हमेशा अपने मेयार को चेंज कीजिए। अमूमन आज के दौर में लड़के लड़कियां खुद, और कल के दौर में जो माएँ रिश्ते ढूंढने जाती थी वो रिश्ता करते वक्त कुछ ज़ाहरी चीज़ों को इतना अहम समझ लेते हैं लोग कि बस दफ़ा इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। और जिस वक्त हमारे रिश्ते करने के मेयार ठीक हो गए तो बाकी बातें भी ठीक होंगी। हम आज नस्लों के बिगाड़ की बात तो करते हैं, लेकिन रिश्तों के इंतखाब की बात नहीं करते, क्योंकि इसमें माँ बाप की गलती होती है और उधर हम बच्चों को कसूरवार ठहराते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स अपने जवान होते हुए बेटे को लेकर आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चा मेरी बात नहीं मानता। उस लड़के ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी जो मर्जी बात कीजिएगा, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दे दें कि बेटा होने के नाते मेरे बाप के जिम्मे मेरे क्या हकूक थे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तेरा पहला हक तेरे बाप के जिम्मे ये था कि वो तुझे एक अच्छी माँ देता, और फिर उसके बाद ये था कि तेरा अच्छा नाम रखता, और फिर उसके बाद तेरी अच्छी तरबियत करता। तो उस लड़के ने कहा कि फिर मेरे बाप ने तो मेरी इसमें से एक भी बात पूरी नहीं की। इसने शादी करने के लिए एक मजूसी यानी फायर वर्शिप पर औरत से शादी की। नुकसान क्या हुआ कि मेरी माँ चूंकि गैर मुस्लिम थी तो उसने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की, और नाम इसने मेरा जवाला रखा, जाले जैसे लगते ना जानवर कीड़ा, तो अरबों में ये रिवाज आम था। तो हजरत उमर फारूक ने उस लड़के की बात सुन के उस बाप को कहा कि चले जाओ, कसूर इस बच्चे का नहीं तुम्हारा है। तो यहाँ इस आयत के साथ इसको रख के लीजिए कि जब भी आप अपने लिए बीवी का इंतखाब करें, या अगर आप अपने बेटे के लिए या बहन के लिए लड़की ढूंढें, तो इस हुक्म को सामने रखिए। इसके बाद आयत नंबर 222 में एक ऐसा मसला है जो यहाँ देखकर अजीब लगती है बात, लेकिन इसका ताल्लुक तलाक से है, जो कि अब आगे इसके बाद मुस्तकिल 2-3 रुकू तक चलेगा। इसीलिए फरमाया, सवाल किया गया, वयस्सलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाए इनके करीब ना जाओ, हाँ जब वो पाक हो जाए तो इनके पास जाओ, जहां से अल्लाह ताला ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस आयत में किनायतन ला तकरबू हुन्ना कहा। सवाल पैदा होता है कि इसे क्या मुराद है, कौन समझेगा, कैसे समझेगा कि यहाँ ऐसे दिनों में बीवी के करीब ना आने से क्या मुराद है। आमतौर पे तो देखिए तो इससे ऐसे ही लगता है कि इस हुक्म को सुनकर मर्द फौरन एक सोफे से उठ के दूसरे पे चला जाए, और हो सकता है घर में ही रहते हुए कमरा बदले, क्योंकि जी कुरान में आ गया कि तुम करीब ना आओ। तो यहाँ नोट कीजिए वही जुमला जो हमने शुरू में भी नोट किया था कि कुरान पाक को समझने की डिक्शनरी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पीछे करके कुरान की एक आयत भी नहीं समझ सकते। तो अल्लाह के नबी ने इस आयत से जो बात मुराद दी वो जिस्मानी ताल्लुक है, खास कुर्ब जिसके बाद औलाद पैदा होती है, इससे पहले की बाकी बातें और जिस हद तक भी इजाजत है उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो यहाँ से अल्लाह ताला ने अब तलाक के मौजू को शुरू करवा दिया, और आप कह सकते हैं कि बीच में वो छोटी छोटी टर्म्स रख दी कि जिसका जिक्र आगे होगा। फिर फरमाया, निसा उकुम हरसुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। इस जुमले को सुनकर हमारी कुछ बहनें बड़ी ही नाराज होती हैं, और शायद नाराजगी की वजह ये होती है कि फिल्मों में तो बीवी को लड़की को कभी फूल कहा जाता है, कभी चांद का टुकड़ा कहा जाता है, और जब वो कुरान को खास तौर पे फिर तासुब की निगाह से पढ़ती हैं कि 1400 साल पुरानी किताब, तो उनको लफ्ज़ खेती अच्छा नहीं लगता। हम क्यों खेती हैं हम? और शायद इसलिए भी कि हमारे कल्चर में लोग खेतों और खेतियों में जाने के आदी नहीं रहे, बागों में फूल और रात को चांद की रोशनी देखने के आदी हैं। तो जवाब ले लीजिएगा कि अल्लाह ताला ने औरत को यहाँ खेती कहकर औरत की इज्जत की है। खेती किसान को बड़ी अजीज होती है, किसान का दिल खेती में लगता है, किसान खेती में मेहनत करता है, पहले ज़मीन नरम करता है, फिर उसमें बीज डालता है, हल जोतता है, फिर उसके बाद पानी देता है, फिर उसकी केयर करता है, फिर एक ख़ास वक्त के बाद उसको वहाँ से फसल मिलती है। यही काम एक शौहर को भी सिखाए गए हदीस की रोशनी में, क्या कि तुम अपनी बीवियों के दिल नरम किया करो, फिर उनसे कुर्बत किया करो, और इसी तरह से बीवी को बांझ नहीं करना, औलाद था हसूलो। इसके बरक्स आप देखिए कि फूल को देखने में किसी को क्या मुश्किल होती है। हर आते जाते राह में चलते लोग फूलों से फायदा उठाते हैं और भंवरों की तरह उन फूलों का रस निचोड़ते हैं और आगे चले जाते हैं। क्या आज भी बच्चियों और लड़कियों के साथ यही नहीं हो रहा? उनके हुस्न से कोई फायदा उठा ले और उनको अपनी हवस की कोई भी निशानी बनाकर छोड़ जाए। चांद को देखने में क्या मुश्किल है, हर एक देखता है। तो बात यह है कि हम इस पर अल्लाह का लाख शुक्र करें। बल्कि एक गैर मुस्लिम औरत ने जब कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा तो उसने कहा कि अगर मैं ना जानती होती तो मैं ये जरूर कहती कि इस कुरान को लिखने वाला औरतों का वकील है। कितना औरत का हक दिया गया, लेकिन न जाने क्यों हम अल्लाह ताला से नाला ही रहते हैं, और अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। वला तजलुल्लाह उर्दतल्ली ईमानिकुम अंतबर्रु वतत्तकु वतुस्लिहु बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। यह है वो आयत जिधर से बाज़ाब्ता तौर पे तलाक की हल्की तरीन किस्म की तरफ बात जा रही है। कैसे? और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना न बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इसलाह को छोड़ बैठो, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, इसकी पकड़ उस चीज पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। तो यहाँ कसम की बात क्यों आई कि कसम ही की एक सख्त किस्म तल्लाक है। इसीलिए सबसे पहले तल्लाक में ईला का जिक्र है, जो शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की सूरत में करता है और कर सकता है। तो फरमा दिया, लिल्लज़ीना यूलून मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक ना रखने की कस्में खाएं, इनकी 4 महीने की मुद्दत है, फिर अगर वो लौट आए तो अल्लाह ताला भी बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर तलाक का ही कसद कर लें तो अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। दौरे जाहिलियत में मर्द औरत को लटकाए रखते थे, दिल नहीं चाहा तो कई कई महीने बात ना की, ख्वाहिश ना हुई तो कभी पास ना आने दिया, और फिर तलाक देते, फिर छोड़ते, फिर तलाक छोड़ते, यानी अनलिमिटेड तलाकें थी। इस तरह औरतें साल हर साल तक उस घर में उसकी बीवी बन के भी रहती, लेकिन उनकी कैफियत बेवाओं से भी बदतर थी। अफसोस है कि आज मॉडर्न दौर में, पढ़े लिखे दौर में, और खास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज के बिगड़े हुए माहौल में भी यही हो गया। माँ बाप के दबाव पर लड़के शादियां करके ले तो आते हैं अपने मुल्कों से, लेकिन फिर कई कई साल तक इन लड़कियों से बात नहीं करते। अल्लाह ताला ने यहाँ इख्तियार दिया कि सिर्फ 4 महीने हैं तुम्हारे पास। तुम जिस औरत को बीवी बनाकर लाए हो, अगर उसके तुम हक नहीं दोगे तो इसके बाद उस औरत को हक हासिल है कि वो या तो तुमसे ही तलाक का मुतालबा कर दे, और या फिर तुम नहीं मानते तो गवर्नमेंट से मदद ले। यहाँ से देखिए कि विमेन राइट्स असल में ये है। और इसके बाद फिर तलाक की बात, यानी अगर 4 माह गुजर गए, या तो उससे रजू करो, पलटाओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो एक दफा अपने गश्त में थे तो रातों को अवाम का हाल पूछने वाले दर्दमंद हुक्मरान होते हैं। लिख लीजिए, आज भी जिसके दिल में दर्द होगा ना, वो रात दिन आप पे नजर रखेगा, आपकी मदद करेगा। लेकिन अपने आप को हुजरों में बंद करके इल्म के खौल में ही क्यों ना इंसान बैठ जाए और पीछे क्या हो रहा है किसी को ना पता हो। इसी तरह वो अवाम जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरे, लेकिन राया बेचारी का क्या हाल है। अच्छे हुक्मरान गलियों कूचों में फिर के अपनी राया का ख्याल रखते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ही लोगों में थे। दौराने गश्त उनके कानों में कुछ ऐसे जुमले आए कि जिससे लगा कि एक औरत अपने शौहर को याद कर रही है, कुछ गुनगुना रही थी। पता करवाया तो वो एक मुजाहिद की बीवी थी जिसको कई महीने हो गए सरहदों के ऊपर गए हुए। अपनी ही बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाते हैं, कहते हैं कि शरा में शर्म नहीं, मुझे ये बताओ कि एक औरत कब तक अपने मर्द से दूर रह सकती है। इशारा था उसकी जरूरत की तरफ और उसके जज्बाती ताल्लुक की तरफ, रूहानी ताल्लुक और इसी तरह से मामले की तरफ। तो कहा कि 4 माह बस। फौरन अगले दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने एक नया कानून बनाकर अप्रूव करवाया कि आज के बाद कोई शादीशुदा मुजाहिद 4 महीने से ज्यादा सरहद पे नहीं रहेगा। एक औरत के जज्बात को सुनकर उमर रजी अल्लाह अन्हु कानून बदल दें, आज भी ऐसी ही जरूरत है। तो ऐसे मर्दों को अपने हालात पे गौर करना है। अगर कभी जिंदगी में ऐसा कर चुके तो अपनी बीवियों से माफी मांग लें। کیونکہ یہ معاملات اگر دنیا میں نہ بھی نپٹے تو آخرت میں تو کھلیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اس کو چھپائیں، یعنی مراد کیا کہ پیٹ میں بچہ ہو اور عورت نہ بتائے، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حق حاصل ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ طلاق کے موضوع کے بیچ میں یہ بات کہہ دینا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یہ بھی عورتوں کی طرف داری کی طرف بات جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ جب ایک انسان برے حالات میں پھنستا ہے تو کئی دفعہ اچھی اچھی باتیں بھی بھول جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات سن کر آپ کو مجھے ایک چھوٹی سی چیز پہ غور کرنا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہماری کچھ بہنیں اس پہ بھی ناراض ہوتی ہیں، یہ مرد کو درجہ کیوں ہے، یہ مرد ہم سے اوپر کیوں ہے، یہ ان کو حکمران کیوں بنایا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دیکھیے درجہ کیا ہے، 50-50 نہیں، 49-51، کیا یہ زیادتی ہے؟ اگر بیوی 49 پہ آ جائے اور مرد 51 پہ چلا جائے تو کیا برائی ہے؟ اکثر مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے بھی اس وقت ایک ٹیبل ہوگا، میرے بھی سامنے ہے، اور ایک چیئر جس پہ آپ بھی بیٹھ کر اس بات کو سنا رہے ہیں یا سنوا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی ضروریات کرسی میز سے پوری کرتے ہیں۔ کرسی کدھر ہوتی ہے؟ اگر کرسی کو آپ میز کے برابر کر دیں تو کیا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہ تو کرسی سے فائدہ اٹھائیں گے نہ میز سے۔ تو جس طرح سے میز کو ذرا سا اونچا رکھا جاتا ہے، سٹرڈی ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کرسی بینڈڈ جھکی ہوئی ذرا سی نرم ہے، کمفرٹیبل۔ آپ مثال سے لے لیجئے کہ مرد گھر میں میز کی طرح ہے اور عورت گھر میں کرسی کی طرح، کمفرٹ زون دینے والی بلینڈڈ، اور اسی طرح سے مرد تحفظ دینے والا قوامیت کے درجے پہ۔ ویسے بھی کیا رشتے کرتے وقت ہم نہیں دیکھتے قد سے لے کر، قد کتنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لڑکا تو بڑا اچھا، قد بڑا چھوٹا ہے، ہم ادھر رشتہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو رہتے ہیں ڈیفنس میں اور لڑکا رہے ملیر میں، ہم رشتہ نہیں کرتے۔ عموماً دیکھیے کہ لوگ رشتہ کرتے وقت لڑکوں کی پڑھائی، ان کی شکل و صورت اور ان کی جیب کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ایک درجہ اوپر رکھ لو تو اس میں خواتین کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو خواتین اس ایک حصے کو، ایک 1% اپ گریڈ ہونے کو مان جاتی ہیں، یاد رکھیے کہ ان گھروں میں پھر سکون ہوتا ہے۔ اور جب برابری کی باتیں باہر سے آتی ہیں تو عورتوں اور لڑکیوں کے ذہن خراب نہیں ہوتے۔ تو آئیے ایک مائنڈ میپ دیکھتے ہیں کہ عورت کو کمتر سمجھنا، یہ بھی آج کے دور کا ایک فتنہ ہے۔ بس مرد جنہوں نے دنیاوی تعلیم بھی نہیں لی ہوتی تو دین کی کہاں لی ہوگی، نمبر ایک۔ کچھ مرد ہیں دنیاوی تعلیم نہیں لیتے لیکن دین کی سطحی تعلیم لی ہوتی ہے، وہ بڑے سخت مزاج ثابت ہوتے ہیں۔ اور تیسری طرف دنیا کے بہت پڑھے لکھے لیکن دین کو چھوا بھی نہیں، وہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، اور مردوں کو زیادہ ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے، عورت کو تو ملکہ اور شہزادی بنا کر حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اس سوچ کے ساتھ قرآن کو مت سنیے گا کہ قرآن جینڈر ڈسکریمنیشن کرتا ہے، پھر تو عورتوں کا قرآن اور ہوتا اور مردوں کا قرآن کوئی اور ہوتا۔ اب لفظ آ رہا ہے طلاق کا، پہلی دفعہ اس جگہ، اس حصے میں پہلے دیکھیں ذہن سازی کی جاتی ہے، یہی کرنا چاہیے، یہی بہترین سپیچ ہے اور یہی بہترین بات ہے۔ کسی انسان سے بھی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، یعنی اگر شوہر سے کہنا ہے گروسری لے آئیں تو پہلے ایک دو جملے اس کی صحت کے بارے میں پوچھ لیجئے، اس کا کوئی کام تو نہیں، پھر کہیے اچھا یہ کام کرائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جتنی باتیں ہم نے پڑھی 221 سے آن ورڈ، یہ طلاق کے لیے ذہن سازی کی، اور اب طلاق کی حد بندی ہو رہی ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح بإحسان، یہ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں، تم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس پر دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے۔ طلاق کے موقع پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حدوں میں رہنا، ہم تو شادی کے موقع پہ حدوں پہ نہیں رہتے، بلکہ ہماری شادیاں تو حدیں توڑنے کا ذریعہ بن گئیں، اور اپنے گمان میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ لو شادی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے۔ تو ہمیشہ انسانی معاملات میں معتدل رویہ رکھنا چاہیے۔ अब क्या हुआ, दो तलाकों के बाद फिर अगर इसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब इसके लिए हलाल नहीं, जब तक कि वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह न करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेलजोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जान ले कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह तला की हदूद है जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। जब तुम औरतों को तलाक दो, वो अपनी इद्दत खत्म करने पर आए, तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और इन्हें तकलीफ पहुंचाने की गरज से जुल्म और ज्यादती के लिए न रोको। जो शख्स ऐसा करेगा इसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ। नोट कर लीजिए इस आयत का तर्जमा कि कुरान पाक का ये वाहिद मुकाम है जहां मुसलमानों को ये कहा गया कि तुम अल्लाह के दीन को और अल्लाह की आयतों को खेल न बनाओ। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाही हुज़ुआ। और अफसोस क्या है कि आज इतना ही तलाक का मौजू उम्मते मुस्लिमा में खेल बन चुका। आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल तलाक का जिक्र है, जिस तरह इन आयात को पढ़ते हुए लग रहा है कि बार बार तलाक का जिक्र है, तो हकीकत है कि तलाक भी एकदम में हो जाने वाला या किया जाने वाला काम नहीं। ये 3 महीने का प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप है, इसकी शरायत है, कयूद है। लिहाजा इन सारी आयतों को पढ़ लीजिए। एक लेक्चर अगर आप सुनना चाहें इस मौजू को डिटेल से, निकाह से तलाक तक, आप उसको सुनकर जरूर ये बात कहेंगे। पहली बात है कि तलाक कोई अचानक मामला नहीं। खाने में नमक तेज होने पे शोहर को गुस्सा आया और तलाक है तलाक है तलाक है कह दिया, ये खेल है बनाना। हमने तलाक का तरीका कुरान से भी सीखा और अभी आगे भी सीख रहे हैं, लेकिन आज अमूमन हमारी उम्मत में और हमारे कल्चर में तलाक का क्या तरीका है, किससे सीखा? यानी तलाक उन मौजूआत में से है जिसको उलमा की हद में तो पीछे कर देते हैं, वहां तो इख्तलाफ है ही, लेकिन अवाम में तलाक देने का तरीका क्या है? फिल्मों से सीखा, ड्रामों से सीखा। आम तौर पे दिखाया जाता है, मर्द को गुस्सा आया, चीख के बोलेगा जा तुझे तलाक, शोर करेगा, बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारेगा, बीवी तड़पेगी, फिर एकदम बिजली जाएगी और फिर बाहर बारिश होगी और वो उसका सामान समेत उसको बाहर डाल देगा। ये है कुरान की आयतों का मजाक करना। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाही हुज़ुआ। याद रखिए कि जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो फिर जिन चीजों को देखेंगे वहीं जाकर तो ये बातें करेंगे। तो जरूरत है कि हम किसी भी लड़की और लड़के की शादी करने से पहले हम उनको इन चीजों का सबक दें। और दूसरी बात भी याद रखिए कि आज भी तलाक की शरह आम जगहों से बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? यानी आज मुस्लिम घरानों में भी उतनी ही तलाकें होने लग गईं जितनी के गैर मुस्लिमों में सुनी जाती थी, और खास तौर पे वेस्टर्न माहौल, वेस्टर्नाइज कल्चर में जहां भी मुसलमान जी रहे हैं वहां भी यही है। तो उसकी एक दो वजूहात नोट कीजिए, बाकी तो फिर इंशाल्लाह आपको 5वें पारे में बहुत सी चीजें मिलेंगी। पहली बात यह कि ओवर एक्सपेक्टेशन है। लड़का लड़की से ओवर एक्सपेक्ट करता कि ये दुबली पतली साड़ियां पहनकर और अपने आप को खूब लजाने वाली होगी, और बीवी कहती है शौहर हर वक्त मेरे बालों में फूल लगाता रहेगा। और वजह क्या बनी? मीडिया, फिल्में, ड्रामे। तो चंद बातें जहन में रख लीजिए, हर वक्त शौहर आपकी तारीफ नहीं कर सकता। शौहर शौहर है, हीरो नहीं। और माजरत के साथ आप अपनी बीवी से हीरोइन को रिलेट नहीं कर सकते। बीवी बीवी होती है, हीरोइन नहीं होती। हर वक्त वो माहौल घरों में होता ही नहीं जो अमूमन इस वक्त दिखाया जाता है। दूसरी बहुत बड़ी वजह सब्र और बर्दाश्त की कमी है, और वो क्यों है इसको हम तीसरे बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारी तरबियत औलाद का रंग बदल गया। सब्र और बर्दाश्त कम होता है ना, और जुबान भी जरा तेज हो तो बस मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसको इल्म की कमी की वजह से घर टूटने का एक हमेशा का जरिया समझा जाता है और तलाक हो जाती है। अल्लाह हम सबको कुरान को कम अज कम इतना तो पढ़ने की तौफीक दे कि हम इसको समझ सके। आज आपको मुझे अपनी तरबियत के अंदाज भी बदलने की जरूरत है। आज बेटियों को जब बेटा बनाकर पालेंगे तो कुछ इसी किस्म के हालात होंगे। तो दुआ कीजिए कि मैं अल्लाह के दीन को खेल बनाने का और उसकी आयतों का मजाक उड़ाने का अल्लाह ताला हमें जो यहाँ जिक्र कर रहे हैं हम सब इस पे अमल ना करें। वस्कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताबो हिकमत इसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहे इससे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। अल्लाह का डर इतनी बड़ी नेमत है कि ये घरों को टूटने से बचा सकता है। शौहर बीवी के हक में और बीवी शौहर के हक में अल्लाह के डर के सिवा कभी भी पूरी उतर ही नहीं सकती। तो लिहाजा तकवा बुनियाद बनता है घरों को जोड़ने का। वैजा तल्लक तुम, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, तो इन्हें इनके खाविंदों से निकाह करने से न रोको, जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। जब आप वो लेक्चर सुनेंगे और इस आयत को सुनेंगे, इसकी तफसीर, तो आपको हैरत होगी कि आज कितने घराने जो अभी पूरे टूटे नहीं थे, एक दरार आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह ने गुंजाइश दी थी। लेकिन कुछ लोग इतनी शिद्दत बरतते हैं कि कहते हैं नहीं, तलाक हो गई, अब ये औरत बस मर्द के पास दोबारा नहीं जा सकती। तो कम अज कम अपने जाती जिंदगी के मसाइल के लिए तो हम कुरान पाक समझ सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक जब होती है तो बच्चा भी साथ होता है, यानी बच्चों वाली माँ है, तो उसको सामने रखते हुए अब अगले अहकाम। वल वालिदात युर्देना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिसका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं इनके जिम्मे इनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स इतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी इसकी ताकत हो। माँ को इस बच्चे की वजह से या बाप को इसकी औलाद की वजह से कोई जरर न पहुंचाया जाए, वारिस पर भी इस जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों, यानी माँ बाप, अपनी रजामंदी से बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो। नोट कीजिए, दोबारा डर की बात है। तकवा, देखिए, 2 तरह के तकवे होते हैं। एक हकूकुल्लाह से मुतल्लिक, जिसमें इंसान अपनी इबादात पे गौर करता है, और एक तकवा होता है इंसानी मामलात में। हकूकुल इबाद को पूरा करते हुए अल्लाह हमें ये दोनों ही तकवे अता फरमाए। बास लोगों में हकूकुल्ला वाला तकवा बहुत होता है, लेकिन बंदों के मामले में वो बड़ी कुनछुरी बनते हैं। इबलीसियत की कुछ ऐसी ही मिसाल थी। इबलीस अल्लाह से डरता था, अल्लाह के सामने तो सजदे करके थका ना होगा, लेकिन आदम के आगे अकड़ गया। तो अल्लाह ताला हमें इंसानी मामलात में भी और इबादत के मामलात में भी अपना डर अता फरमाए। और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। तुम में से जो लोग फौत हो जाए और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक इद्दत में रखें, फिर जब मुद्दत खत्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से खबरदार है। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन इन औरतों से निकाह के बारे में बात करो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है, तुम जरूर इनको याद करोगे, लेकिन इनसे पोशीदा वादे ना कर लो। तलाक के मौजू के दरमियान में पहले बेवगी की इद्दत और इसके बाद तलाक के अभी प्रोसेस के इन बिटवीन की इद्दत की बात है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने इस किताब से हमारी हर जरूरत पूरी की, और ये किताब हमारे जहनों में आने वाले हर सवाल का जवाब है। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अकदे निकाह जब तक इद्दत खत्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म रखता है, तुम इससे खौफ खाते रहा करो। और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हिल्म वाला है। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर मेहर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, इन्हें कुछ न कुछ फायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फायदा दे। भलाई करने वालों पर ये लाजिम है। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने इन्हें हाथ नहीं लगाया हो और तुमने इनका मेहर भी मुकर्रर कर दिया, तो मुकर्रर मेहर का आधा मेहर दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ कर दे या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ कर देना तकवा से बहुत नजदीक है, और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। क्या पता चला? तलाक है, बच्चे के हकूक की बात है, इद्दत की बात है, मेहर की बात है। फिर किस हाल में तलाक हुई कि मेहर कौन देगा, कौन, कितना, कब, कैसे, ये सारे अहकाम सिर्फ मालिकुल मुल्क बता सकता। इंसान तो इसमें भी इतनी गलतियां करते। और जब ये मौजूद घरों में शुरू हो रहे होते हैं और एक तरफ बातें और उधर की बातें, दुख सुख, और हर वक्त ही घर में एक जंग की कैफियत है, तो सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर होती है वो नमाज है। इसीलिए फरमाया, हाफिज अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان کی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو. اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری پر ہی صحیح. ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، اب یہاں بیوگی کی عدت اور اس کے ان بٹوین کچھ مسائل ہیں. آپ یاد رکھیے کہ یہ سارے احکامات جو ہم یہاں تقریباً 2 رکوع میں پڑھ رہے ہیں، یہ کئی سالوں کے بیچ کے مراحل تھے، اور یہاں بھی تدریج کا خوبصورت اصول آپ کو مجھے دکھ رہا ہے. پہلے بیوہ کی عدت 1 سال ہوتی تھی، اور دور جاہلیت میں تو عورت پہ اتنا ظلم تھا کہ اس کو جانوروں کے ساتھ کسی کمرے میں رکھ دیتے، اور اتنی گندی بدبودار ہو چکی ہوتی کہ 1 سال گزارنے کے بعد تعفن کی پوٹلی بن چکی ہوتی. اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کیا اور اس کو 4 مہینے 10 دن پہ کیا. تو یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے کی آیت ہے جس پہ آج عمل نہیں ہے. جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کر جائیں، ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. طلاق والیوں کو اچھا فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. حیرت نہیں ہو رہی، ہم تو تحفے دیتے ہیں طلاق کے بعد، وہ باتوں کے، وہ الزاموں کے، وہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے، اور ساتھ ہی ایک نیت کرتے ہیں اب اس کی آگے کہیں شادی نہیں ہونے دیں گے، اور پتہ چلا کہیں کوئی رشتہ ہو رہا ہے فوراً پہنچ جائیں گے. آپ کو نہیں پتہ یہ عورت کیسی اور آپ کو نہیں پتہ یہ لڑکا کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحان تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کتنا پیارا دین تھا لیکن صرف اس امت نے اس کو سمجھ کے نہ لیا. تو آج دیکھیے ہم دنیا میں کیسے برے بنے. آج ویسٹ میں رہتے ہوئے جب عورتیں اور لڑکیاں کرائسس سینٹر میں جاتی ہوں گی تو لوگ کیا پوچھتے ہوں گے. یقین کیجئے اگر ہم اپنے گھروں ہی کی اصلاح کر لینا تو غیر مسلموں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کا پوائنٹ بنے گا کہ ان کے گھروں میں اتنا سکون کیوں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مشورے پہ عمل نہیں کیا. کیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ تم سمجھو کو ذرا غور سے تو دیکھیے، کیا واقعی ہم اب اس قرآن کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو بڑھا دے. تو یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے میرے لیے غور طلب ہے. ہم سب ان ساری چیزوں پہ اگر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا. چند جملوں میں اس موضوع کو ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ اب آگے آخری ایک واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کچھ باتوں کی نصیحت کی. تو خلاصہ کیا کہ یہ علم لینے والی چیز ہے، وہ اسلام جو مرغی کو بھی ذبح کرنے کا طریقہ سکھائے کہ ایک دم گردن کاٹ کے نہ چھوڑ دو، اس کو بھی ہلکا سا کٹ لگا کے چھوڑ دو، تو کیا وہ ایک عورت کو جو ابھی تک آپ کی بیگم اور مسز تھی اور فلاں فلاں تھی، ایک لمحے میں آپ اس کو کاٹ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اس موضوع کو قرآن سنت کی روشنی میں سمجھنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ عورت اور مرد دونوں کے حق میں یہی طریقہ بہتر ہے. اس کے بعد آگے ایک واقعہ آ رہا ہے جس میں امت وسط کے کچھ مسائل. نمبر ایک، وقت کے ساتھ اس میں بھی موت کا ڈر آ گیا، فیئر آف ڈیتھ. دوسری کمزوری جو آج امت مسلمہ کو پیش آئی ہوئی ہے وہ جہاد سے فرار ہے. سوچتے ہیں کہ جہاد کے لفظ کے ساتھ ہی پتہ نہیں ہم کیا ہو جائیں گے، اور جنگ میں جائیں گے تو بس فوت ہو جائیں گے. تیسرا فتنہ دنیا کی طلب کا فتنہ پیدا ہو چکا ہے. ان تینوں کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک خوبصورت واقعہ سناتے ہیں جس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور جب آ جاتا ہے تو آپ اس سے پیچھے نہیں ہوتے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. ذرا سے اس پہ غور کیجئے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ہم سب خود سے پوچھیں کیا میں ناشکری تو نہیں، کیا میں اللہ اور بندوں کے معاملے میں ناشکر پن کا اظہار تو نہیں کرتی؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ کے رستے میں اگر کچھ جدوجہد کرنی پڑے، اللہ کے لیے جان مال وقت لگانا پڑے، تو غم نہ کرو، ये तुम उसके साथ सौदे कर रहे हो कि जो तुम्हें दुगने के तिगने करके देगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम भी आज इल्मी जिहाद में अपना हिस्सा डालने वाले बने, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बाकी चीज़ों से भी निकलने का जरिया बनेंगी। तो इसके बाद एक और वाक़या है, दोनों वाक़यात की असल एक ही है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, लोग मौत से नहीं बच सकते। और आज के हालात में ख़ास तौर पर आप देखिए कि लॉकडाउन के जो दिन हैं, तो अपने अपने मुल्क की हुकूमत की बातों को फॉलो करना ये तवक्कुल के मुनाफी नहीं। इस वक्त भी कुछ लोग जबरदस्ती जिद करते हैं, शायद ही वो पूरे महीने में कोई दो चार से ज्यादा दफा तरावी पढ़ने गए हों, लेकिन आजकल एक मौजूए सुखन है मस्जिदों में तरावी, ऑनलाइन पे तरावी, हरम से तरावी। याद रखिएगा एक बात, आम दिनों में जो नेकी आप करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी वक्त बीमारी या मजबूरी की सूरत में बंदा वो काम ना करे तो अल्लाह ताला उसको उतना ही अजर देता है। एक शख्स जो मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, बीमार हो जाता है, नहीं गया, फरिश्ते उसको मस्जिद में जाकर ढूंढते हैं, लोग कहते हैं वो तो आज नहीं आया, कहते नहीं हम देख रहे हैं कि उसके बारे में तो यही लिखा गया कि वो इस वक्त मस्जिदों में, तो इस वक्त झगड़े पैदा करने, इख्तलाफी बातें, उसकी उसकी आगे कीजिए, ये दुआ कीजिए इंशाल्लाह जो ही इजाजत मिलेगी, इसके बाद एक भी नमाज मैंने कजा नहीं करनी। तो फिर बात बनने की है, वरना ऐसी बातों को, सारी पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। खुदा के लिए आप अपने इस कुरान को फोकस कीजिए, इस वक्त ये है वो चीज जिसमें तकलीफों, परेशानियों और बीमारियों से निकलने का नुस्खा है। अलम तरिल मलई मिम बनी इसराइल, या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो, क्या ये सच है? क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनकी जिंदगी में जब नेकी का मौका आता है तो पीछे होते हैं, और जब तक वो मौका आया नहीं होता उस वक्त तक बातें करते हैं। तो यहाँ एक वाकया है तालूत और जालूत का किस्सा, जो हमें बताता है कि नारे लगाने वाले अमल के वक्त तो अवेलेबल ही नहीं होते, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज हम भी नातों में दावे तो बहुत करते हैं कि हजारों जाने आप पे कुर्बान ए रसूलुल्लाह, लेकिन अमली तौर पे अगर आप देखिए तो आज हमारी जिंदगी का बड़ा जिहाद सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ऊपर करना ना रह गया। तो जरूरत है इस बात की कि जब वक्त आए तो अपने आप को अल्लाह के रास्ते में पेश कीजिए। तो ये वाक्य आपको मुझे एक तो लीडरशिप क्वालिटी सिखाएगा कि जिस्मानी ताकत के साथ जहनी ताकत होनी चाहिए, लीडर का जहन बहुत शार्प हो, दिल रकीक हो, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लीडरशिप अता फरमाए। बनी इसराइली का वाक्या है, उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे। नोट कीजिएगा जुमला क्या है, अल्लाह की राह फी सबीलिल्लाह, लेकिन अंदर मोहब्बत किसकी है। अगले जुमले में देखिएगा, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। दिल में कुछ और हो और नाम ऊपर से अल्लाह का हो तो भी मदद नहीं आती और जरूरत ही नहीं मिलती नेकी ज्यादा देर करने की। फिर जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। अल्लाह अकबर। एवरीबॉडी सेज समवन विल डू एंड नन हैज डन। आज उम्मत का भी यही हाल है, वो कर लेगा ना। हुक्मरानों पे बात करेंगे, कभी मजहबी जमात पे बात करेंगे, कभी किसी सुपर पावर का नाम लेंगे, और खुद मजे से लाओ आज कौन सी नई फिल्म है उसको देखे। तो याद रखिए कि बातों से अल्लाह को हम खुश नहीं कर सकते। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, क्योंकि दिल में तो ये था ना कि मुझे बड़ा बनाया जाएगा, तो वो तो हुआ ही नहीं, तो अब हम कैसे कोई काम कर सकते हैं। ये भी दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और है। इससे तो हम बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। यही जुमला मक्का वालों ने अल्लाह के नबी के लिए भी बोला था कि अगर अल्लाह ने किसी को नबी बनाना था तो इस बस्ती की दो बड़ी शख्सियात में किसी एक को बना देते, यानी वलीद बिन मुगीरा में से एक को बनाते, ये क्या एक यतीम शख्स उसको सपने किया गया। तो याद रखिए लोग हमेशा दौलत और लीडरशिप को मिस अंडरस्टूड करते हैं। खैर, इनका ये जुमला सुनकर क्या हुआ, नबी ने फरमाया सुनो अल्लाह ताला इसी को तुम पर बरगजीदा करता है, यानी चुनता है, और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने फिर कहा इसकी बादशाहत की जाहरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है, और आले मूसा और आले हारून का बखिया तरका है, फरिश्ते इसे उठाकर लाएंगे, यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। ताबूत सकीना का जिक्र है, आर्क ऑफ कॉवनेंट। असल में इसके अंदर कुछ मन, कुछ सलवा, हजरत मूसा के कुछ मोजजात लिए लिए फिरते थे, और इनकी हैसियत उस वक्त इनकी नजरों में किबले की हो चुकी थी। इबादत के वक्त सामने रखते, जंगों में इसको सामने ले आते, दुश्मन जब गालिब आया तो वो इनका ताबूत लेकर चला गया। कौमों पे जब जवाल आता है तो वो इसी तरह रिचुअल्स के पीछे भागती हैं और दीन की रून से निकल जाती है। इसी पर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने इनसे क्या कहा, जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जिसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद लोगों के सब ने पी लिया। ये कौन सी नहर थी? ये दुनिया की नहर थी। जब कौमें चुने हुए जाने के बावजूद, उम्मत वसत का लकब और टाइटल पाने के बावजूद, सिर्फ दुनिया की नहर नहीं समंदर में गोते लगाने की ख्वाहिशमंद हो तो ऐसा ही होता है। पानी ज्यादा पी ले तो चला नहीं जाता। इसी तरह दुनिया का पानी ज्यादा पीने वाले इतना तेज नहीं चल सकते कि वो जन्नत तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो ये एक सिंबल है, हम सब भी अपने आप को चेक करें कि हमने कितना पिया, और हम इस दुनिया से की आजमाइश से, ये भी एक फितना है, एक आजमाइश है। बहुत दुनिया का हो जाना भी बाज़ दफ़ा आजमाइश है, कारोबार का फैल जाना भी आजमाइश है कि आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं, और नतीजा वही था जिसकी उम्मीद थी। देखिएगा, जब हजरत तालूत मोमिनीन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं, ला ताकता, नोट कीजिए इस जुमले को, ला ताकत लना अल्यौम, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और इसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बस औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि कलील गिरोह का अल्लाह के इज़न से एक बड़े गिरोह पर गालिब आना। असल चीज अल्लाह का इज़न और इंसान का सब्र है। जब सब्र की जगह थुड़ दिली, हब्बे दुनिया और मौत का खौफ आ जाए तो उम्मत फितनों का शिकार हो जाती है। हम इस आईने में खुद को देखें। आज के मुसलमान का मकसद हयात क्या था? अल्लाह ने उसको इज्जत और ऑनर कितनी दी, अल्लाह ने उसको जिम्मेदारियों का बोझ दिया, लेकिन वो दुनिया के इस समंदर में गोते खा खा के हल में मजीद करने लगा। दुनियावी मुफादात समेटने, दुनिया सजाने और नफ्स की पूजा पाठ में मगन हो गया। तो बताइए फिर ऐसी उम्मत कैसे उम्मत वसत बने, और कैसे इन जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया कि देखो तुम अपनी जाती जिंदगी को इतना फैला लोगे तो तुम कैसे इस इज्तमाई जिम्मेदारी का बोझ उठाओगे, जिसमें मेरे समेत हम सब में से उनके लिए जो दीन के लिए, जो मखलूक के लिए, जो अल्लाह के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबक है कि अपनी दुनिया को मुख्तसर रखिए। और फिर क्या होगा, ये सब कीजिए तो फिर दुआएं मांगे। असल में यहाँ किसी भी जंग में कामयाबी के इंग्रेडिएंट्स दिए गए, क्या? मजबूत लीडरशिप, अच्छे रहनुमा मिल जाएं, आपको गाइड करने वाला कोई मिल जाए, और इसके साथ कुव्वते बर्दाश्त हो कि पानी सामने है लेकिन चुल्लू ही पीना है, सेल्फ कंट्रोल्ड टीम हो, और साथ ही साथ फिर अल्लाह से दुआएं मांग लीजिए कि मेरे मालिक तू मुझे जाया न करना, और लीडर्स दुआएं देने वाले ही हों, और साथ काम करने वाले काम पे फोकस करें तो अल्लाह की मदद आती है, जैसे कि यहाँ आ रही है। वलम्मा बरसुली जालूत व जनूदिही قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। जब इनका जालूत और इसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सबर दे, साबित कदमी दे, और काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा। आज भी हम सबको हर दुआ पे आमीन कहने की जरूरत है। चुनाच अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ, और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत और हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बास लोगों को बास से हटाते ना तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर फजलो करम करने वाला है। आप देखिए कि जब आप में कोई स्किल होती है ना, तो अल्लाह इस तरह हादसाती तौर पे आपको आगे ले आते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो एक चरवाहे थे और एक आम अदना दर्जे के सिपाही की हैसियत से गिरोह में थे, अल्लाह ने उनसे एक बड़ा काम लिया कि मुखालिफ कौम के बादशाह या सरदार जालूत को उनके हाथों से मरवा दिया। यहाँ हल्की सी तवज्जो के लिए बात करूंगी कि बाज़ दफ़ा हम रवा रवी में कुरान पाक का टेक्स्ट गलत पढ़ जाते हैं। अगर कभी जल्दी में पारा पूरा करने के शौक में आपने वक़तला दाऊदा जालूतू पढ़ दिया, मतलब बिल्कुल उलट जाएगा। तो लिहाजा ज़बर ज़ेर और आराब को सही करके कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर आखिरी आयत तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैक, ये अल्लाह ताला की आयात है जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। व इन्नकल मिनल मुरसलीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का यकीन दिलाया गया कि चाहे लोग आपकी मुखालफत क्यों ना करें, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तो ये था सयकुलु सुफहा दूसरा पारा। आइए जरा सारे पारे को जज्व करने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। पहले देखिए कि कुछ अहम हिदायात। आप जब पूरा पारा पढ़ते हैं ना, तो आपको चूंकि बहुत सारी बातें नहीं लगती हैं, तो आप कहते हैं किसको बताएं, कहाँ हैं, पता नहीं कहाँ पड़ी थी, चले ऑडियो में से सुने। अब इतनी 2.5 घंटे की ऑडियो में कहाँ ढूंढें। तो आपकी मदद की गई है, हम अगले पारों में भी इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। आयतों के साथ कुछ टॉपिक बोल देती हूँ। 143 में उम्मत की जिम्मेदारी की बात थी, 148 में नेकियों में सबकत करने की बात थी, 153 में मुश्किलात में करने का काम था, 155 में अल्लाह की राह में आजमाइशें आकर रहेंगी मसाइबे खमसा, और इसी तरह 168 रिस्क हलाल खाने की तलकीन, 179 में कसास का हुक्म देखा हमने, 193 में अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म था, 249 में अल्लाह की मदद का ईमान अफरोज वाकया हमने पढ़ा। और ये चीजें आपके लिए इंग्लिश में भी लिख दी जाएंगी ताकि जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सुन सकते वो इससे फायदा उठा लें। तो पारे के आखिर में कुछ गोल्डन वर्ड्स, जेम्स ऑफ दी पारा, सुनहरे हरूफ। सबसे बड़ी चीज मकसद हयात, बहसियत मुसलमान। फिर उम्मत वसत का किरदार। फिर मकसद इबादत क्या है, हसूल तकवा, लअल्लकुम तत्तकून। फिर सिर्फ अल्लाह से शदीद मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह। फिर आयत 177 आयते बिर, नेकी का जामे तसव्वुर। और फिर इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और दीन इस्लाम के नफाज के लिए माल नफ्स और इल्म से जिहाद करो। सिर्फ ये हमें याद रह गया तो बहुत सारे काम अल्लाह ताला हमसे लेगा इसके बाद जो आज तक छुटे हुए थे। और जितनी ज्यादा अल्लाह से दुआ करेंगे के मालिक मुझसे कुछ काम ले ले, तो आप देखिएगा कि सिर्फ ये आपकी नेकियां रमजान और दौरे कुरान तक महदूद नहीं रहेंगी। हमें हर वक्त अल्लाह की जरूरत है, हर हाल में उसकी जरूरत है। और जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में एक दफा टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसके बाद आप चख के थूक दें। इस काम में कितना सुकून है, कितनी खुशी है, ये तो वही जानते हैं जो इस काम को लिल्लाहियत के जज्बे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे करते हैं। हम अल्लाह ताला से इस बात की दुआ भी करते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं कि अल्लाह इस पारे के एक एक लफ्ज को हमारे दिल पे उतार दे, कहे सुने हुए पे अमल की तौफीक दे। सवाल पैदा होता है कि इसको पढ़ने के बाद मैंने आपने अपने अंदर क्या खूबियां लानी है। उम्मत वसत के नाते से जो मतलूब लोग हैं आज अल्लाह को, वो कौन है? अल्लाह की मर्जी तलाश करने वाले। खुद से पूछिए, क्या मैं अल्लाह की मर्जी की बात करती हूँ और या अपनी मर्जियों की बात करती हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के दिए हुए जिस्म पे अल्लाह की मर्जी चलेगी। फिर अल्लाह का मुतालबा क्या कि इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी दाखिल हूँ, अधूरी, आधी, 40, 80, 60%, कितनी? और गोल बनाइए कि पूरा दाखिल होना है। यानी इबादत अगर इस्लाम के रंग में ढली हुई है तो फिर मामलात भी और लाइफस्टाइल भी। और इसी तरह वो लोग शैतान की पैरवी करने वाले ना हों। आज जो फितना पड़ा वो क्या था कि जिम्मेदारियों का एहसास, और अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी, तो फिर सारे पारे में तो हम फितनों की बात करते ही रहे, तो क्या उसकी दवा नहीं लेंगे? वो कैसा डॉक्टर होगा जो बीमारी सुनता भी रहे, उसकी वजह भी बताता रहे, लेकिन दवा ना दे? तो आइए देखते हैं कि फितनों का हल क्या है, सोल्यूशन क्या होगा। पहली बात, आप अपने दिल की तख्ती पे लिखिएगा के बहसियत मुसलमान अपना मकसद हयात यानी उम्मत वसत का किरदार याद रखना है। यानी जाती जिम्मेदारियों से उठ के इज्तमाई जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करनी है। لوگوں کو اللہ اور دین سے جوڑنا ہے، دین کو نافذ کرنے کے لیے نفس، جان اور علم سے جہاد کرنا ہے. بولیے انشاءاللہ. کیونکہ دوا لا کر گھر میں رکھنے سے صحت نہیں ملتی، اس کو کھانا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں وہی سنیں جس نے عمل کرنا ہے، ورنہ آپ یہاں چھوڑ دیجئے سننا اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے. پھر اگلی چیز کیا کہ امت مسلمہ کا کردار نبھانے کے لیے پورے دین اسلام میں داخل ہونا ہے، پوری شریعت اسلام کی پابندی کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنی ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے، فذکرونی اذکرکم. اور پھر سب سے بڑھ کر امت وسط کی ذمہ داری نبھانے کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا، اور جو مشکلات آئیں ان پر صبر نماز سے مدد لینی ہے. اور دیکھیے بچہ ڈوب رہا ہو تو ماں یہ نہیں کہے گی کہ پتہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے کسی نے کچھ کہا تھا کہ نہیں. وہ تو کود جائے گی، اس کو تو چاہے تیرنا بھی نہ آتا ہو وہ سمندر میں گھسے گی اپنے بچے کو لیتے ہوئے. تو جب آپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، جان خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تو کیا دین کے اس بچے کو بچانے کے لیے آپ آرام سے بیٹھیں گے؟ جو مسلمان درد رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے تو کسی نے کہا ہی نہیں. تو لہٰذا جب دین سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ جان مال وقت جتنا بھی دیں گے آخر میں یہی کہیں گے، جان دی دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر اسی طرح ایک اور حل ہے فتنوں کا کہ آیت بر کے آئینے میں اپنے عقائد، عبادات، معاملات، عہدوں کی پاسداری، غرض سب چیزوں کا محاسبہ کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوگا؟ تو ابھی تو نہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت مصروف ہیں. رمضان کے بعد کے لیے اپنی لسٹ میں ایک نام لکھ لیجئے، اسلام A to Z، جس میں ہم لوگ الحمدللہ پورے ایک مہینے کے کورس میں 4 ویک میں یہ کورس کرتے ہیں. پہلا پورا ویک عقائد کے بنیاد پہ، دوسرا عبادات، تیسرا معاملات اور چوتھا اخلاقیات پہ. الحمدللہ آج سے 2-3 سال پہلے اٹلانٹا سے یہ کورس ہوا تھا، اور اس میں ہم نے دین کو اصل طور پہ سمجھا تھا کہ امبیسیڈر آف اسلام بننے سے پہلے انسان کیسے پورے دین کو سیکھے. پھر اسی طرح عبادات کی اصل روح تقویٰ حاصل کرنی ہے، آخرت کی یاد کے لیے حج کرنا ہے، اور شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے. ریچولز آف اسلام، داڑھی کا مذاق نہیں کرنا، ٹوپی کا مذاق نہیں کرنا، ٹخنوں سے اونچی شلوار کا مذاق نہیں کرنا، عورت کے حجاب نقاب کو برا نہیں سمجھنا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. اسی طرح امت وسط کی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھانے کے لیے حرام چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے، حلال طیب روزی کھانی ہے، وحدت امت کے لیے آپس کے اختلافات کو بھلا دینا ہے. اونچی سے کہیے آمین انشاءاللہ. عصر حاضر یعنی دور حاضر میں مسلمانوں پر سختیاں اور مصیبتیں اور بہت سے فتنوں کی یلغار کی وجہ امت وسط کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا ہے، اور اپنا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. یہاں پہ دوسرا پارا پورا ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جذب کیجئے اس کو، اپنے آپ کو ذرا سا احساس دلائیے، میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے 2 پارے پڑھ لیے ہیں. کیا آپ میرا اس پر عمل کا ارادہ ہے، نیت ہے، یا صرف خواہش ہے؟ بعض دفعہ ہم خواہش کو نیت سمجھنے لگتے ہیں. یہ بھی جم بنا دیجئے. خواہش اور نیت کے بیچ میں جد و جہد اور کوشش ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ اس کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیں گے. تل کا رسول، تیسرے پارے کا نام، یہ ہیں وہ رسول. کیوں یہ نام آیا؟ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو دوسرے پارے کی آخری آیت کیا تھی؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ تو مرسلین میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں وہاں مرسل کہا گیا، یہاں اب جمع کے صیغے کے ساتھ دوسرے رسولوں کی بات ہے. یہ کیوں ہے؟ آیت کا پہلا لفظ ہے جس میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہے، اور آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس پارے میں کئی رسولوں کا ذکر ہے، خاص طور پہ آل عمران کے ناطے سے. چلیے یہ تو ہم انشاءاللہ ڈسکور کریں گے. پارے کا موضوع کیا ہے؟ بڑے شعور سے کہنے اور سننے والی بات ہے، فکر آخرت کی جگہ فکر دنیا کا فتنہ. जब आखरत की फिक्र से ज्यादा दुनिया की फिक्र लग जाती है और माँ बाप अक्सर तफक्कुर के अंदाज में ये कहते हैं, पता नहीं इन बच्चों का क्या बनेगा, हाय ये पढ़ेंगे कि नहीं, हाय ये लिखेंगे नहीं, हाय इनके रिश्ते कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, तो उस वक्त ये चीज़ एक फितना बनती है। थोड़ा सा इस मौजू को समझ लेते हैं ताकि जब आगे जाएं तो पूरे शरह सदर के साथ जाएं। क्या हम इस बारे को जिस थीम की रोशनी में देखने वाले हैं वो क्या है? क्या हमें अपनी औलादों की सिर्फ दुनिया की फिक्र है कि हम 3 साल का बच्चा एक माशरे के हाथों में देते हैं और फिर शायद वो कभी भी वापस हमारे हाथों में वैसा बन के नहीं आता जो हम चाहते हैं, और खास तौर पे बुढ़ापे में अकेले रह जाने वाले माँ बाप जो लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, औलादों की खिदमत करते हैं और फिर वो इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि वो फिर माँ बाप के करीब भी नहीं आ पाते, और हर वक्त की फिक्र सिर्फ दुनिया, दुनिया का माल। तो आज असल में फिक्र आखरत बामुकाबला फिक्र दुनिया है। क्यों इस पारे का ये मामला रखा गया? तो थोड़ा सा इसका रब्त ले लीजिए पहले ही मौजू को जो कि पहली ही आयत में छेड़ा गया, वो क्या है? शख्सियत परस्ती, तफरकात, झगड़े, इख्तलाफात। तो जब फिक्र आखरत होती है ना तो लोग इख्तलाफी बातों में उलझने की बजाय दिलों को जोड़ने की बातें करते हैं, अमल की बातें करते हैं। अफसोस की बात है कि आज हमारी उम्मत में यही हो रहा है कि हम बस अपने अपने पसंद की शख्सियात और पसंद के इदारों और गिरोहों और जमातों का नाम लेकर बस दीन का स्टैंप लगाते हैं और कहते हैं ना इससे बाहर कुछ ना इससे अंदर कुछ। तो जब आखरत की फिक्र होती है ना तो हम इंसानों के साथ इस तरीके से जुड़ने की बजाय हकीकत में कुरान और सुन्नत तक जाने की कोशिश करते हैं, और फिर हकीकत यह है कि जब फिक्र आखरत होती है तो फिर हम अल्लाह को बड़ा मानते हैं और फिर हमें आयतुल कुर्सी समझ आती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा। इस पारे की तो एक खूबसूरती ये भी है कि इधर आयतुल कुर्सी भी आने वाली है। और इसी तरह से जब फिक्र आखरत होती है तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के दरवाजे खुल जाएंगे। जब ये यकीन होगा कि यहाँ की खेती में एक बीज डालूंगा तो आखरत की खेती में 70,000 या उससे भी जायद बीज मिलेंगे और दाने मिलेंगे, तो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करना आसान होता है। जब फिक्र आखरत होती है तो रात दिन खर्च करना आसान होता है, ढके छुपे खर्च करना आसान होता है, और जब फिक्र आखरत होती है तो सूद और उसके मुतल्लिकात से डरने लगेंगे। ये हो नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में किसी भी तरह से सूद आए, चाहे इसका खूबसूरत सा नाम इंटरेस्ट क्यों न रख दिया जाए। और इसी तरह जब फिक्र आखरत होती है तो कर्ज ख्वाह से नरमी बरतने लगता है इंसान, कि अगर मजबूरी में उसने कर्ज ले ही लिया तो बजाय इसके कि आप उस पर सूद की किस्तें चढ़ाकर उसकी नस्लों को भी गिरवी रख लें, आप तो असल कर्ज भी माफ करने लगते हैं। और अगर फिक्र आखरत होगी तो हकीकत है कि हमारे कर्ज के लेन देन दुरुस्त हो जाएंगे, हम दुआओं के साथ जुड़े रहेंगे। सूरत के आखिर में हम खूबसूरत दुआएं सीखते हैं सूरत बकरा की, और उस वक्त फिर इंसान कहता है कि अल्लाह बस इस दुनिया से अच्छे तरीके से गुजार दे, और अब बनला तो आखिजना इन नसीना अवख्ताना। फिर सूरह आले इमरान खुलेगी तो आप उसमें देखेंगे कि फिक्र आखरत वाले मुशतबे आयतों में नहीं घुसते, वो शुबा डालने वाले मसले आगे नहीं लाते, वो मुख्तलिफ ही मसले ला ला कर उम्मत को झगड़ने पे मजबूर नहीं करते। और जब फिक्र आखरत होती है तो इंसान हिदायत के बाद गुमराही से इसी तरह डरने लगता है कि जैसे बीमारी के बाद सेहत आने वाला फिर बीमार न होने के खतरे में है, कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। और जब फिक्र आखरत होती है तो ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात में एक इंसान खो नहीं जाता, जो हम सूरत आले इमरान में पढ़ने वाले हैं। और फिर हम सिर्फ इसी रात दिन में नहीं खो जाते, हमें अल्लाह की रजवान सबसे बड़ी लगती है। और जब फिर हकीकत है कि फिक्र आखरत होती है तो हम मोमिनों को छोड़कर गैरों पर भरोसा नहीं करते। और सबसे बड़ा थीम जो इस बारे में है, ये हमारी अपनी नहीं हमारे बच्चों की फिक्र आखरत है। यानी ये जो आज टॉपिक है, ये आपकी मेरी फिक्र आखरत से ज़ायद अपने बच्चों की फिक्र आखरत ज्यादा है या फिक्र दुनिया? एक जुमला बड़े दिल पे पत्थर रखकर सुनने और सुनाने वाला। हम अक्सर कहते हैं कि अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और खास तौर पे उस वक्त बोलते हैं जब छोटे छोटे बच्चे हो। तो जुमला बदलना है आपने इस बारे के दौरान, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे पहले मर गए तो इनकी आखिरत का क्या होगा। जब फिक्रे आखिरत होती है ना, तो इंसान अपनी औलादों को वक्फ दुनिया नहीं करता, बल्कि वक्फ लिल्लाह करता है। और ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह उम्मे मरियम से कि इन्नी नजर तुलक माफी बतनी महर्रा। आज जरूरत है अपने बच्चों को अल्लाह के नाम वक्फ करने की। घर देने वाले तो बहुत हैं, अब औलादों को इंशाल्लाह वक्फ करना है। और फिर जब फिक्र आखरत होती है तो बूढ़ा होने के बावजूद जकरिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह से मायूस नहीं होता कि मेरे तो औलाद हो नहीं सकती, और फिर कनूत आता है, कानतीन बन जाते हैं। और जब फिक्र आखरत होती है तो ईमान और कुफर की आंख मचोली नहीं, बल्कि एक ही बात याद आती है, इन दीन इंदल्लाहिल्इस्लाम। जो पारे के अंत तक आप देखेंगे तो सारी बात का खुलासा कि फिक्र आखरत ही वो चीज है जो आपकी मेरी जिंदगी को ट्रैक पे लाती है। ये मौजू समझ आ गया था उन अस्हाब को कि जो मक्का के 13 साल तक नबी सल्लम के साथ रहे, और उसके बाद फिर तन मन धन तज कर दिया उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दीन की खिदमत में, इस दीन के दिफा पे। आज मसला क्या है कि हमें इल्मे आखरत है, हम उसी को फिक्रे आखरत समझते हैं। बहुत बड़ा बड़ा करके ये जेम लिखने की जरूरत है कि आज का मुसलमान उम्मते वसत का एक फर्द, कंधों पे शहादत अलन्नास की जिम्मेदारियां रखने वाला मुसलमान आज इस खुश फहमी का शिकार हो गया, बल्कि गलत फहमी का, कि मुझे तो आखरत का सब पता है। मरेंगे, फिर कब्र में हिसाब होगा, फिर उठाते हैं, फिर क्यामत आएगी, फिर उठेंगे, फिर मैदाने हशर में जाएंगे, बस फिर सीधे जन्नत में। यानी इल्मे आखरत तो बहुत है, स्टेप बाय स्टेप आखरत को देख लीजिए, किताबों की किताबें भरी हैं, लेकिन इल्मे आखरत फिक्रे आखरत में नहीं ढला। आप कहेंगे इसका फर्क भी थोड़ा सा बताइए, तो इसका फर्क ये है कि अगर हमें हकीकत में फिक्रे आखरत होता तो ये दुनिया इससे बहुत मुख्तलिफ होती जो आज है। कभी कभार लोग झूठ बोलते और डर जाते एकदम, वो फलां दिन फलां रात फलां जो वक्त था ना, मैंने उस वक्त गलती से कोई चीज देख ली, बस फौरन अस्तग़फिरुल्लाह। हमारी जिंदगी मुख्तलिफ होती, लोग डर जाते। अल्लाह ताला आपको मुझे सही मानों में फिक्र आखरत लगा दे। चलिए पारे के मरकजी ख्याल के साथ जो आयत हमारे पास है इस वक्त, आयत नंबर 35 सूरत आले इमरान। इस कालत इमरात इमरान रब्बी इन्नी नजर तुलक माफी बतनी मुहर्ररा, माफी बतनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी इन्नक अंतस समीउल अलीम। मरियम अलैहिस्सलाम की माँ का जिक्र है। अल्लाह ताला उस वक्त भी सुन रहे थे जब इमरान की औरत कह रही थी कि मेरे परवरदिगार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तेरी नजर करती हूँ, वो तेरे ही काम के लिए वक्फ होगा, मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। जब इस आयत पे पहुंचेंगे तब तो पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, तो यहां अलग से समझ लीजिए। एक औरत की कीमती चीज उसकी औलाद होती है, और हन्ना नाम की ये औरत जो शौहर की नेमत से महरूम हो चुकी है, बच्चा पेट में है, आम हालात में ऐसी औरत बड़ी ज्यादा हसास हो जाती है, अपने आप को बहुत महरूम समझती है, लेकिन वो कैसी औरत है कि अभी बच्चा बाहर नहीं आया और उसको अल्लाह के नाम पे लगा रही है। यानी मैं इस बच्चे से मुआशी उम्मीदें नहीं लगाऊंगी, इसको बुढ़ापे का सहारा नहीं समझूंगी, बल्कि ये मेरे रब के नाम होगा। इसको नजरे तबर्रो कहते हैं, नेकियों से भरी हुई नजर, ये जो कहते हैं ना नजर मानना, ये वही लफ्ज है। आज उम्मते मुस्लिमा को भी ऐसी नजरें मानने की जरूरत है कि अपने बच्चों को भी दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह के रास्तों में पेश कर दें। इसके बरक्स अमूमन देखा और सुना क्या जा रहा है, जिसको जुबाने काल से शायद ही को माने, लेकिन जबाने हाल यही कहती है कि हमने भी अपने बच्चों को वक्फ कर दिया, लेकिन किसके लिए? वक्फ लिद दुनिया, वक्फ लिद तालीम, वक्फ लिद स्टेटस। और हमें भी गम फिक्र बस यही है कि कुछ बन जाएं, कुछ पढ़ जाएं। 3 साल 4 साल के बच्चे के स्कूल के होमवर्क के लिए माँ इतनी परेशान है, बाल सफेद कर लेती है। तो इंशाल्लाह हम इसकी नीयत करेंगे कि अपनी नस्लों की, अपने बच्चों की दुनिया की फिक्र से ज्यादा आखरत की फिक्र करनी है। तो इसके लिए फिर एक दुआ तो मांगनी ही पड़ेगी जो सूरत आले इमरान 36 में सीखेंगे। इन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं इसे और इसकी आइंदा नस्ल को शैतानी मर्दूत के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। अपने जिस बच्चे और बच्ची पे नजर पड़े ये पढ़ा करें। उस माँ ने तो पहले ये नियतें कर ली थी, हमें भी अपनी नस्लों को और अपने बच्चों को हर मुमकिन तरीके से शैतान रजीम से दूर रखने की कोशिश करनी है। उनको ऐसे कार्टून और ऐसे गैजेट्स नहीं देने जो शैतान को खुश करें, और उनको ऐसे कपड़े और लिबास नहीं पहनाने, ऐसे खाने नहीं खिलाने कि जिससे हमारे बच्चे शैतानों के हाथ में तरने वाला हो जाएं। आज पेरेंटिंग के स्टाइल के रिवाइवल की ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। और आज के इस मौजू के साथ जो हदीस है हमारे पास, वो हदीस नंबर 44 है सही मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन अहब्ब इलैही मिन वलदिही व वालिदिही व नासी अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसको मेरी मोहब्बत इसकी औलाद, माँ बाप और सब लोगों से ज्यादा ना हो। तो कह लीजिए कि औलाद से मोहब्बत के जज्बे को हमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ताबे रखना है, और अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए बच्चों की तरबियत आसान कर दे। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा करंट अकाउंट है। हम चले जाएंगे, हमारे तो रियल अकाउंट बंद हो जाएंगे कि दुनिया में रहा नहीं तो इसका अकाउंट सीज कर दो, लेकिन हमारे बच्चे इम्तिहान के पर्चे हैं। आपका हर बच्चा आपके इम्तिहान का पर्चा है, लिहाजा उसकी सही तरबियत करिए ताकि वो आपको कल वहाँ शर्मिंदा न करवाए। और इस वक्त जो बताती हूँ उसमें और पारे कैंट में जो बताती हूँ उसका फर्क समझ लीजिए। इस वक्त ये चीजें आपको माइल करेंगी कि अब मैं अगला भी सुनूं, क्योंकि पता हो कि होगा क्या तो आप सुन लेते हैं, और जो एंड पे हम करते हैं उसका मतलब है मैं ढूंढ सकूं। तो एक चीज जो इस बारे में देखेंगे, ईमान का रास्ता इख्तियार करना क्यों जरूरी है। तागूत का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाना, इससे क्या मुराद है? यानी जब आप अल्लाह ताला पर ईमान ले आते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में तब्दीली और तगैयुर कैसे आता है, इसको भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ईमान पर दिल का मुतमईन होना कैसे होता है? अल्लाह के रास्ते में उसकी रजा जोई के लिए दिल की खुशी के साथ खर्च करने से क्या मुराद है? फिर बेहतरीन माल अल्लाह की राह में कैसे पेश किया जाता है, इस बारे में माल की बहुत बात है इंशाल्लाह, उसका रब तभी हमायतों के साथ लेंगे। फिर इसी तरह से आखरत पर यकीन रखना, इससे क्या मुराद है? इल्म में पुख्तगी पैदा करके रासिखून फिल इल्म में शामिल होना, हम सूरत आले इमरान के शुरू में ही सीखेंगे। अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन को इख्तियार करना, अल्लाह ताला के पसंदीदा रवैये अपनाना और नापसंदीदा रवैये तर्क कर देना। इसी तरह हम सीखेंगे कि अदल और रास्ती का हुक्म देना, इससे क्या मुराद है? और अल्लाह ताला से मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, इससे क्या मुराद है? और ख़ास तौर पे अपनी औलाद को अल्लाह के काम के लिए वक्फ करने की नियतें करनी है। इस बारे में किताब और हिकमत का इल्म सीखना है और पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है ताकि पाकीज़ा नस्लें पैदा हों। याद रखिए, माँ और बाप दोनों का पाकीज़ा होना, उसकी नज़रों का पाक होना और उसके रिस्क का पाक होना बहुत ज़रूरी है इस बात के लिए कि अच्छी नस्लें पैदा हों। रिस्क हलाल का असर आप अच्छी औलाद की सूरत में देखते हैं। तो आइए देखते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 253 से आखिर तक इस बारे में हम अब देखेंगे, 253 से 286। बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है इस सूरत का, जिसमें से 253 जो पहली आयत है पारे की, इसका टॉपिक लिख लीजिए, शख्सियत परस्ती एक ख्वाहिश। बाज़ लोग दीन के नाम पर भी इसी ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे भी बचा कर रखे और लोगों को अंधी तकलीद करने से बचाए। इसी तरह 259 से 260 आयत का टॉपिक होगा इब्राहिम और उज़ैर अलैहिस्सलाम की इल्मे आखरत को यकीने आखरत बनाने की ख्वाहिश। आयत 263 में हम देखेंगे कि फितना रियाकारी का, यानी नाम कमाने की ख्वाहिश, ये बंदे को कहाँ तक ले जाती है। और आयत 264 में हम देखेंगे इन्फाक फी सबीलिल्लाह, आखरत में अजर कमाने की ख्वाहिश है। इधर इन्वेस्ट है उधर प्रॉफिट है। तो ख्वाहिशात और यकीन आखरत का साथ साथ चलता जाएगा तो इंशाल्लाह दुनिया भी अच्छी रहेगी और आखरत भी। और इसी तरह फिर आयत 275 से 281 में सूद, कर्ज और रहन के मसाइल, اور ہماری دنیا کی نا ختم ہونے والی خواہشات کا ذکر ہے. آیت 282 آیت دین ہے, قرآن پاک کی طویل ترین آیت, اور یہ نماز کے متعلق نہیں, روزوں کے متعلق نہیں, بلکہ مالی معاملات میں انسانوں کے ان بٹوین کے معاملے کی آیت ہے. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. اسی میں جھوٹی گواہی دینا اور گواہی چھپانا اور دنیاوی مفاد کی خواہشات کا تذکرہ ہے. اور پھر آخر میں 285-286 سورت کا آخری رکوع, اور اس میں مانگی بھی خوبصورت دعائیں کہ کفار کے مقابلے میں اللہ کی مدد کی خواہش ہے. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 253 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کر دیے, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے, لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا, ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ماضی کی شخصیات کے نام پر فرقوں میں اور گروہوں میں بٹنا اور شخصیات کو پوچھنا اسلام کا یہ مزاج نہیں. اس آیت میں تفریق بین الرسل کی بات ہے, تو یاد رکھیے کہ یہ تو حرام ہے کہ آپ کسی ایک رسول کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں اور آپس میں تقابلی کرتے رہیں. اور تفضیل بین الرسل حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا ایک اصول ہے, ہر چیز کی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں. آم دیکھ لیجئے تو بڑا میٹھا بھی ہوگا اور کھٹا بھی ہوگا. اسی طرح ڈاکٹرز میں کوئی بہت سمجھدار ٹو دی پوائنٹ علاج کرنے والا ڈاکٹر ہوگا اور کچھ صرف دوائیاں آزمانے والا ہوگا. تو یہاں جو سبق ہے کہ دین کے نام پہ شخصیات کو ٹیلی نہ کرو, کون اچھا پڑھاتا ہے کون برا, کس امام نے کیا کہا کیا کیا. پہلے لوگ رسولوں کے نام پر جس چیز پہ جھگڑتے تھے, افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اسی طرح ائمہ کرام کے نام پہ جھگڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وسعت قلبی بھی دے. اس کے بعد دیکھیے گا آیت نمبر 254 سے آن ورڈ مال کے خرچ کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے ایمان والو, جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو, اس سے پہلے کہ وہ دن نہ آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت اور کافر ہی ظالم ہے. یہ کون سا دن ہے؟ آپ کہیں گے لاک ڈاؤن کا دن ہے, دکانیں بند, تجارت نہیں, سوشلائزنگ بند, آئسولیشن ہے, دوستیاں نہیں, اور اگر کوئی کسی کی سفارش کر دے کسی غلط کام پہ تو اس کو پکڑیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن قیامت کے دن کی یاد دلا رہا ہے. یہ وہ کام کر جائے گا جو آج تک مسلم مبلغین نہ کر سکے. تو کیا ٹاپک ہے اس آیت کا؟ مہلت سے فائدہ اٹھا لو. آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرانہ روش ہے. اس کے برعکس مومن تو دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاریاں کرتا ہے. پوچھئے کہ آپ نے اپنی اور اپنی اولادوں کی آخرت کی تیاری شروع کر دی؟ اور جھوٹے سہاروں کی نفی ہے کہ چند جھوٹے نام لے کر نہ کہہ دو کہ فلاں بچائے گا تو فلاں بچائے گا, بلکہ بات یہ ہے کہ تم اللہ پہ نظریں لگاؤ. آیت 255 آیت الکرسی, قرآن پاک کی اہم آیت, بڑی آیت, ایک آیت تین صورتوں کے برابر ہے. صرف یہ ایک آیت ہی نماز میں پڑھ لیں تو کافی ہوگی. 8 سے 10 جملے ہیں, تقریباً 20 سے 25 اسماء و صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس میں, اور پڑھتے وقت ذرا سا غور کیجئے اس آیت کے اوپر کہ الحی القیوم پیر ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے شروع میں ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا انسان اور جنت کے بیچ میں صرف موت کو لاتا ہے, اور تحفظ بھی ہے, حفاظت بھی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو بات سکھا دی کہ چاہے مال غنیمت سے ہی شیطان کچھ چوری کرنا چاہے تو وہ چوری نہیں کر سکتا. پورے دل کے شعور سے پڑھیے. مال کے استعمال اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد آیت الکرسی کے آنے کی حکمت کیا ہے؟ کہ جب پتہ ہوتا ہے نا کہ کس پہ لگا رہے ہیں تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. گھر کے ملازمین کے لیے ہم اس دل کے ساتھ نہیں خرچ کرتے جیسے اپنے گھر میں آنے والے کسی بڑے معروف اور باعزت مہمان کے لیے کرتے ہیں. तो अल्लाह के रास्ते में देना आसान कब होगा? जब हम ये जान जाएंगे क्या अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह ताला ही माबूदे पर हक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सब का थामने वाला है, जिसे ना ऊंघ आती है ना नींद, इसकी मलकियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं, कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है, जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते, मगर वो जितना चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है, वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ये है जी आयतुल कुर्सी 255। तौहीदे बारी ताला का खजाना है, इसमें अल्लाह ताला के कितने नाम है, इसको बाद में गौर कीजिएगा तो आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत में भरेगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी फजीलत बहुत है, बस आपने मैंने इसको याद भी करना है, हर नमाज के फौरन बाद भी पढ़ना है और रात को सोते वक्त भी पढ़ना है। इसी तरह इसमें तौहीद के अमली तकाजे भी हैं, यानी अल्लाह के माँ सिवा से नजरें हटानी है। और हकीकत यह है कि ये खजानों में से खजाना है। पहली आयत का जो पहला जुमला है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, इसके बाद अल हय्युल कय्यूम, ये एक पेयर है। इसी तरह अगर आयत के एंड पे जाइए तो हुवल अलीयुल अजीम है। क्या पता चला कि ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। दोनों का रब्ता यानी पहले जुमले का 10वें जुमले से, दूसरे जुमले का 8वें जुमले से और तीसरे का 7वें से रब्त है और चौथे का 6ठे से। शिफात का मामला इसमें दे दिया मगर मशरूत, तो शिफात बरहक है लेकिन मशरूत है। इसको समझने के लिए इसके एक एक लफ्ज पे गौर करने की जरूरत है और अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे। अगली आयत कुरान पाक की मारूफ तरीन आयत है, सबसे ज्यादा लोग इसको कोट करते हैं लेकिन मिस कोट करते हैं। आइए देखिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं। हिदायत और दलालत से रोशन हो चुकी इस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए। इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा। अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। नोट कीजिएगा, यह आयत मुसलमानों के लिए नहीं है, यह गैर मुसलमानों के लिए है। मुराद के दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं, दीन अकीदे से बनने वाला पूरा निजामे जिंदगी है। किसी को दीन में दाखिल करने पे जबरदस्ती नहीं है। आप किसी को गन पॉइंट पे बाय हुक और बाय क्रुक इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते, ना हमारे नबी ने ऐसा किया, वरना 23 साल की चपकलश 1-2 महीने में पूरी हो जाती। तो यहां मुसलमानों ने इसको मिसकोट किया। लोग कहते मुसलमान हो जाओ उसके बाद कोई पाबंदी नहीं, नमाज पढ़ो नहीं कोई पाबंदी नहीं और सो ऑन। नहीं, इससे मुराद है कि आप किसी को दीन में दाखिल नहीं करेंगे। हाँ, दाखिल होने के बाद पाबंदियां ना लगें तो फायदा क्या? बच्चा स्कूल में जाए और उसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, फायदा क्या? तो बात यह है कि इस्लाम का इतिकादी और अखलाकी और अमली निजाम किसी पर जबरदस्ती नहीं ठोसा जा सकता। तागूत की नफी करना और अल्लाह पर ईमान ले आना ऐसा ही है जैसे एक मजबूत कड़े को थाम लेना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दफा अगर तुम अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत कर लोगे तो होगा क्या तुम्हारे साथ, कि तुम हकीकत में अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक महसूस करोगे। और अल्लाह कौन है? अल्लाहु वलीयुल्लज़ीन आमनु युख्रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर, ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे भी काम बना दे। कारसाज कौन होता है? कार काम साज बनाने वाला। तो अल्लाह हमारे भी सारे काम तू बना दे। अपने लिए आज से एक दुआ रख लें, ए अल्लाह मैं तेरे काम करूंगी तू मेरे करना, ए अल्लाह मैं तेरे रस्ते में हर वो चीज पेश कर दूंगी और कर दूंगा जो तेरे दीन को फायदा दे, और तू अपनी नेमतों रहमतों के खजानों से मुझे अनायत कर। सच बताएं आपके पास ज्यादा होगा कि अल्लाह के दीन के पास? आपके पास ज्यादा होगा। अगर ये बात समझ आ जाए ना तो लोग सिर्फ इसी लालच में आकर दीन के काम करने लगे। और अल्लाह ताला जो बहुत बड़ी दौलत देता है ना किसी इंसान को, वो क्या है? वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसमें रहेंगे। ए मेरे मालिक, हमें जहन्नम के अंधेरों से बचा और उससे पहले दुनिया के अंधेरों से बचा, जहालत के अंधेरों से बचा। दुआ कीजिए अल्लाह कुरान का नूर जिंदगी में ले आ। देखिए अंधेरे में तो सांप और रस्सी का फर्क भी नहीं पता चलता, हलाल और हराम का फर्क कहाँ पता चलेगा। अल्लाह हमारे वो सब साथी जो इल्म के और कुरान के नूर से दूरी की वजह से गुनाहों में और गलत चीजों में पड़े हुए हैं उनको इससे निकाल दे। सही मुस्लिम की रिवायत है 1715 और 593। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुश होता है तुम्हारी तीन बातों से और नाखुश होता है तीन बातों से। अब चौकन्ने हो जाइए, कौन सी बातों पे? मेरा रब खुश होता है वो जो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ है। जितना अल्लाह से प्यार होगा उतना इन बातों पे आपके कान खड़े होंगे। तो पहली चीज क्या है? खुश होता है इससे कि तुम इबादत करो इसकी और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, इसकी रस्सी सब मिलकर पकड़े रहो यानी कुरान पर अमल करते रहो और फूट मत डालो यानी तफरकों में ना बटो। अल्लाह ताला हमें इन तीनों कामों की तौफीक दे। इसके बाद नाखुश होता है बेफायदा गुफ्तगू से, तो निकाल दीजिए आज के बाद बहसें छोड़ दीजिए और बेकार खबरें लेना इधर की उधर बातें करना ये वक्त जाया करना, और बहुत पूछने से यानी इन मसाइल का पूछना जिसकी जरूरत ही ना हो या इन बातों का जिनकी हाजत ना हो और जिनका पूछना दूसरे को नागवार गुजरे, ये कोई भी सूरत हो सकती है। और तीसरी चीज है माल के तबाह करने से यानी माल को वेस्ट करना, टूटी खुली है पानी जाता ही जा रहा है। अभी खाना काफी ज्यादा बर्तन में लगा है तो सिंक में डाल दिया, ऐसा ना कीजिए। मुराद ये है कि जो फायदा उठाए बगैर ना दुनिया में काम आए ना उकबा में। कई लोग आतिशबाजी के नाम पे कितनी एनर्जी जाया करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अपने माल की भी और जान और ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह के रहमत से जितना कुरान जिंदगी में आता जाएगा अंधेरों से रोशनी का सफर होगा। आगे तीन मिसालें हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों का मकसद एक ही है, तागूत को छोड़कर अल्लाह की तरफ आना। कैसे? अलम तर इला अल्लज़ी हाज्ज इब्राहिम फी रब्बिह, क्या तूने इसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में झगड़ रहा था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है, वो कहने लगा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू इसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बमुकाबला नमरूद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुश्त की मिसाल बने, यकीन आखरत था। नमरूद गई की मिसाल बना, मुनकरे आखरत था। तो दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमारा भी ईमान इब्राहिम की तरह ऐसा हो जाए कि हमें इल्मे आखरत से ऊपर उठाकर फिक्र आखरत पे डाल दे और हमारे दिल के भी सारे शक और वहम दूर कर दे। दूसरा वाक्या हजरत उजैर के नाम पर। यह इस शख्स की मानित कि जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी थी यानी तलपट थी, ऊपर नीचे थी, बिखरी हुई थी। वो कहने लगे, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुम पर गुजरी? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, बल्कि तू 100 साल तक रहा, फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं, तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं जब वो सब जाहिर हो चुका। तो कहने लगे, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। याद रखिये कि अल्लाह ताला अंबिया कराम को बाज़ दफा ऐसे मुजज़ात दिखाते हैं जो आम लोगों को नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि अंबिया कराम ईमान की भट्टी होते हैं जिसमें फिर दूसरों ने भी जलना होता है। वैसे भी उस्ताद का मुशाहिदा ज्यादा हो, उसकी ऑब्जर्वेशन तेज हो तो शागिर्दों को वो अच्छी तरह से बात समझाता है। चूंकि अल्लाह का पैगाम लेकर अंबिया कराम उम्मतों की तरफ निकलते थे तो अल्लाह ताला इस तरह के अनयूजुअल वाकयात उनको दिखाते थे। जैसे अगला वाक्य आ रहा है, वह इस काल इब्राहिम और रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। देखिए फिक्र आखरत होती है ना तो गम लगता है कि अल्लाह मरने के बाद क्या होगा। हम तो अभी जीने के गमों में पड़े रहे, हमारी तो अभी दुनिया ना संवरी, हम आखरत के संवारने की क्या फिक्र करें इल्ला माशाल्लाह। जवाब सुनिए, जनाबे बारी ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें ईमान नहीं यानी शक है आखरत में? जवाब दिया, ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया, चार परिंदों के टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर एक एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है और हिकमतों वाला है। हकीकत ये है कि अल्लाह सुबहाना ताला अम्बिया कराम के इन वाक़यात के जरिए हम सब के अकीद आखरत को मजबूत करते हैं। और फिर एक बार दोहरा लीजिए कि फिक्रे दुनिया को कम करके फिक्रे आखरत तक जाने के लिए यकीन लाजमी है। इंसान तभी अल्लाह के रास्ते में दे सकता है जब उसको यकीन हो के कल मिलेगा। अब यहां से आगे थोड़ा सा सूरत के आखिर तक का खुलासा लीजिए, तो फिर हम तर्जमे पे चलते हैं। और वो क्या है कि जो पीछे से मौजू चल पड़ा हुआ है उसकी डिटेल्स हैं, माल खर्च करने की मुख्तलिफ सूरतें। सबसे बेहतरीन सूरत सदका है। शुरू में हम इसका जिक्र पढ़ने लगे हैं। अभी मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह से सदकात को आम करना चाहिए, और सदका सिद्क से है, सच्चाई, प्योरिटी, इखलास, यानी जो दिल की खुशी से खर्च करेगा अल्लाह उसी का कबूल करेगा। फिर इसी तरह से अगर कोई सदका ना दे और जरूरतमंद लोगों को माल चाहिए तो दूसरा रास्ता है कि कर्ज ले सकते हैं। ये बीच का रास्ता है, मिडल वे है। कर्ज कोई देता नहीं, एक गरीब खड़ा है और अपना गुर्दा बेचने को तैयार है लेकिन उसके करीबी भी उसको नहीं देते, तो उसके सामने फिर एक और सूरत आ जाती है। कुछ लोग पेश करते हैं, आइए हम आपको कर्ज देते हैं आसान किस्तों पे और बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे, इसको सूद कहते हैं, जो बदतरीन सूरत है, इससे तो बचना है। और फिर वो कहते हैं, नहीं इसमें तो नहीं पढ़ूंगा, सूद तो काला होता है, ये तो ब्लैक मनी है। तो फिर आखिरी सूरत रहन रह जाती है कि अपनी को बिलोंगिंग किसी के पास रखकर उसके बाद माल लीजिए। इन सब का जिक्र हम पढ़ने वाले हैं। क्या पता चला कि माल दुनियादार के लिए तो फितना होता है लेकिन दीनदार के लिए आखिरत कमाने का जरिया है। तो अपने मनी मैटर्स को इन आयात की रोशनी में देखें कि माल खर्च करने की कैफियत में मैं किस जगह पे हूं। जब फिक्रे आखिरत होती है और यकीन आखिरत होता है तो माल देना किस तरह आसान होता है। बीज दुनिया की जमीन पे लगता है और फल वहां से लेना है। कैसे? मसलुल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में से 100 दाने हों, और अल्लाह ताला इसे चाहे और बढ़ा दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाले और इल्म वाले हैं। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं और ना ईजा देते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है, इन पर ना तो कुछ खौफ होगा ना वो उदास होंगे। देखिए, सदका दिल का बोझ दूर करता है। आज खौफ है, डिप्रेशन है, घबराहट है, तो सदकों के दरवाजे खोल दीजिए, अपनी ज़कातों के मुंह खोल दीजिए ताकि अल्लाह की मखलूक भूखी ना मर जाए। नरम बात कहना और माफ कर देना उस सदके से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। यानी फकीर को और गरीब को और मासी को अगर कुछ दे नहीं सकते तो डांटो तो नहीं, प्यार की बात कर दो, उसके दुखी दिल पे अपनी नरम बात का फाहा तो रख दो। क्यों लोगों को परेशान करते हो, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हो? तो क्या देखा, आयत 261 से 263 में इन्फाक फी सबीलिल्लाह। देखिए, आप सिर्फ एक लफ्ज को छुपाकर देखिए तो निफाक बनेगा। निफाक और इन्फाक में एक अलिफ का फर्क है। दिल में निफाक होता है ना तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं होता। हाँ, फिर इन्फाक फी दुनिया, इन्फाक फिल कपड़े, इन्फाक फिल जूते, इन्फाक फिल फर्नीचर, जेवर, खाना पानी, शादियां, बड़ी बड़ी दावतें होती हैं। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह क्या है? अल्लाह से जोड़ने वाले काम। सुबुल रास्ते को कहते हैं, रस्सी को भी कहते हैं। सबीलिल्लाह क्या है कि वो रस्सी जिसको पकड़ कर बंदा अल्लाह तक पहुंच जाए। इसका बेहतरीन तरीका इल्म पे खर्च करने से शुरू होता है और मुजाहिदीन जो तलवारें पकड़े खड़े हैं उन पे खर्च करना है। यानी अगर इल्म पे लगा दें तो कलम खरीदेंगे, और जो कौम इल्म पर खर्च करती है उसको हथियारों पे खर्च करने की नौबत ही नहीं आती। फिर सदका और कर्ज़े हसन का फर्क और सवाब में इजाफा खलूस और हालात की बुनियाद पर। ये आयतें हकीकत में डिटेल से सुनने वाली हैं। आप अपनी थिंग्स टू डू में लिख लें कि जब कभी मौका मिला, कोई बात नहीं दौरे कुरान के बाद ही सही, तो मैंने इसको तफसील से सुनना है, क्योंकि एक एक आयत आपके मेरे फायदे की है कि जब आज यहाँ 1 के 70 और 70 से 700 और 70,000 और उससे भी ज्यादा मिलने की उम्मीद हो, तो फिर इंसान यहाँ बचा बचा के क्यों रखे। अब यहाँ कुछ मैनर्स हैं कि देने में क्या अदब अदाब हो। ऐ ईमान वालों, अपनी खैरात को एहसान जता कर और ईजा पहुंचा कर बर्बाद ना करो, यानी मासियों को बातें ना सुनाया करो, गरीब रिश्तेदारों को शर्मिंदा ना किया करो कि फिर मांगने आ गए, पहले भी दिया था, पहले उसका हिसाब दीजिए। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह ताला पर ईमान रखे ना कियामत पर, इसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मट्टी हो, फिर इस पर जोरदार मीह बरसे और वो इसको बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। देखिए, रियाकारी तो ऐसे ही है। एक मिसाल से समझ लीजिए कि कोई आपके घर में आया, आपने दरवाजा खोला और उसके हाथ में कोई गिफ्ट बॉक्स था। आप समझे कि मेरे लिए आया, वो पकड़ लिया और क्यों लाए दिया, दिल में कुछ और होता है, जुबान पे हम कुछ और बोलते हैं ऐसे वक्तों में। अब उसने भी आपको दे दिया। अब वो आए बैठे, उनके साथ कुछ और भी लोग थे, सब चले गए। थोड़ी देर बाद आपको एक फोन कॉल आती है उस दोस्त की जो आने वाली के साथ थी। कहा, ये आपने आज क्या किया? आप कहते हैं, क्यों, मैंने क्या किया? आप कहते हैं, वो गिफ्ट आपके लिए तो नहीं वो लाई थी, वो तो यहां से आगे हमने एक शादी में जाना था, वो वहां के लिए पैक करके लाई थी, तो चूंकि हम पैदल आ रहे थे तो हम हाथ में लाए। आप समझिए, आपका जब आपने कहा कि मेरा होगा तो फिर उसने शर्मिंदगी के मारे आपसे कुछ नहीं कहा। बताइए मुझे, क्या आप उस गिफ्ट को रख लेंगी? शर्म और घबराहट के अंदाज में आप उसको दोबारा फोन नहीं करेंगी? तो रियाकार कौन है? दिखावा, वाह वाह, चेक्स पे साइन होंगे, तस्वीरें खींच खींच कर आप मशीनें बांटेंगे, अपने नाम की तख्तियां लगवाएंगे और पेश आप अल्लाह को करते हैं। तो क्या पता चला है 264 में हमने देखा कि इन्फाक जाया कैसे होता है, यानी रियाकारी वो घुन का कीड़ा है जो इस फसल को खा जाता है। तो इन्फाक की हिफाजत जरूरी है। एहसान जताने और तकलीफ देने से इन्फाक जाया हो जाता है, तो जिसको दें उसको भूल जाएं। हमारे बड़े कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल। हम कहते हैं, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल, ट्विटर पे डाल और सोशल मीडिया पे डाल। याद रखिए, अपने कामों को जाया न कीजिए दूसरों को दिखा दिखा कर। इसके बरक्स कुछ आप जैसे खूबसूरत लोग भी हैं जो अल्लाह की रजा के लिए वॉलंटियर करते हैं, उनकी मिसाल आगे 265 में। वमसलुल्लज़ीना युन्फिकूना अमवालहुम इब्तिगा मरदातिल्लाह, इन लोगों की मिसाल है जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं। इस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी पड़े तो फुहार ही काफी है और अल्लाह ताला तुम्हारे काम देख रहा है। मैं सब के लिए दुआ करूंगी जितने लोग इस वक्त भी इस बात को दुनिया में जहां भी पहुंच सके और हमारे अपने घरों में ही इत्मीनान और सुकून से बैठकर सुन सकने के इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब को बेहिसाब दे। आप अपनी स्किल्स के मुताबिक सर्व करें अल्लाह के दीन को, और अल्लाह अपनी शान और अपने जलाल और अपने करम और अपनी जुदो सुखा के साथ आपको इसका बदला अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दीन के रास्तों में खपा दे। अब एक ऐसे शख्स की मिसाल है कि जो देता तो है लेकिन बाद में एहसान जतला कर या रियाकारी से जाया कर देता है, यानी बुढ़ापे की नेकियां संभाल नहीं पाता, नेकियां करता है अपनी ही नेकियों को बाद में जाया कर देता है। ये ऐसा बदबख्त शख्स है कि जिसकी मिसाल क्या है, क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है? देखिए अंदाज देखिए कुरान का, कान खड़े हुए आप किस जुमले को सुन के, क्योंकि ये अंदाज होता है मुखातिब को मुतवज्जिह करने का। फिर बोलती हूँ, क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो? आप कहेंगे जी। जिसमें नहरें बह रही हों? जी। और हर किस्म के फल मौजूद हों? जी। यहां तक तो जी है। फिर इस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो और इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों, और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, यानी आग लग जाए उस बाग को, बस वो बाग जल जाए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। क्या पता चला, अपनी नेकियों की हिफाजत करो, अपने कामों को सिक्योर करो। किसी गुस्से में आकर, किसी जज्बातियत में आकर अपनी कापियां ही खुद ना फाड़ दो। अल्लाह ताला आपको मुझे बचा के रखे। याद रखिए कि बुढ़ापे में नेकियों की हिफाजत करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इंसान बुढ़ापे में बदमिजाज हो जाता है, दवाइयों का असर है, तन्हाई का एहसास है, कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी नेकियां जाया ना हो, पकी पकाई हंडियां जल जाए तो क्या होगा। अभी जिसने चढ़ाई और गिर गया पानी और दाल बिखर गई, कोई बात नहीं, दुख तो होगा लेकिन समेट लेंगे, लेकिन पकी पकाई जाया हो तो उसमें दुख ज्यादा होता है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने आप को बाखलाक रखें। ऐ ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। देखिए कहाँ खड़ा कर दिया। मोमिन वो होता है जो दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है। मुराद यह है कि देने से पहले छटाई ना करो। हम में से कुछ खवातीन अपने कपड़े जब मासियों को देती हैं, फूल बीटे भी उतार दिए, बेलें भी उतार दी, ये बाजुओं पे बड़ा अच्छा काम था इसको उतार लो, ये दुपट्टे से कोई और जोड़ा बनाए, सुघड़ापे के नाम पे एक नुचा पुचा जोड़ा उसको देकर आपने कौन सी हातमताई की कब्र पे लात मारी। तो याद रखिए कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मकसद क्या है, कि मुआशरे से हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क मिट जाए। ये इन लीड्स हैं, ये मिडिल क्लास हैं, ये थर्ड क्लास हैं, और हम तो जी डिफेंस में रहते हैं, और आप तो लिबर्टी में रहते हैं, और फलां तो इधर है। इन सब बातों से इंसान का छिछोरपना तो जाहिर हो सकता है, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। तो खर्च करने और कमाने की सूरतों में अब एक उश्र का तذکرہ है जो जमींदारों से मुतल्लिक है। ऐ ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करो जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है, यानी उसको कोई परवाह नहीं कि तुम उसके नाम पर देते क्या हो। और इंसान क्यों नहीं दे पाता, इतना होता है बैंक में भी, घर में भी, इधर भी उधर भी, तो उसकी वजह वो दुश्मन जो पीछे लगा हुआ है, जो हमारी आखिरत भी बर्बाद करना चाहता है। अश्शैतानु यईदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फख्शा, शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है, यानी कहते हैं ना 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 खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे, और जब माल बहुत बचता है तो फिर उस माल के लिए क्या होता है, और बेहयाई का हुक्म देता है। और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है, अल्लाह ताला वुस्सत वाला और इल्म वाला है। शैतान वादों का झूठा, लेकिन दिल में हमारे बात उसी की आती है, तो क्या है जरा देखिएगा। आयत 268, रहमान और शैतान की दावत। शैतान तंग दस्ती का खौफ दिलाता है ना ना, और खास तौर पे आप देखिए जब आप दीन के नाम पे, अल्लाह की रजा पे, गरीबों पे, और किसी ऐसी जगह लगाएंगे जहां इंसानियत को फायदा हो तो दिल में आएगा नहीं, अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, उसकी फीस जानी है, अभी घर की किस्त देनी है, वो करना है। अल्लाह कहता है इधर आओ, छोड़ो, दुश्मन की बात सुनते हो तो रहमान की नहीं सुनोगे जो के मगफरत के वादे और फजल के वादे करता है। तो हमेशा अंदर की कश्मकश में फतह अल्लाह की होनी चाहिए, क्या अल्लाह के नाम पे दे दो, कल आएगी तो देख जाएंगे हो गया, बच्चे बड़े हो गए अगर तो वो रब उनका भी तो दे ही देगा। और माल खर्च करने की हिकमत मांगनी चाहिए, इसको यहाँ कैसे पेश किया गया, वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, इसे अल्लाह ताला खूब जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, यानी मौका है जाहिर करके देने का दीजिए, फर्ज ज़कात दे रहे हैं आप दूसरों के सामने दीजिए, ताकि जो भूल गए या जिनको याद नहीं या देते नहीं वो भी दें। किसी प्रोजेक्ट में किसी इदारे को देते हैं तो खोल के दीजिए ताकि दूसरे भी उसमें हिस्सा डालें। और इसके बरक्स, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। यानी इनफरादी सतह पे किसी को दो, और नफली और सदकाती तौर पे दो तो फिर छुपा के दो, ताकि तुम्हारे दिल में रिया ना आए, दूसरे भी ना ये कहें कि ये बहुत देती हैं, ये तो हमेशा हाथ उठाती हैं। कुछ लोग शर्त लगाते हैं मासियों को भी, और वो क्या कि देखो तब दूंगी अगर तुम नमाज पढ़ोगी, ये जोड़ा तुम्हें तब दूंगी अगर तुम नमाज पढ़ोगी। रग़बत के लिए अच्छा है, लेकिन देखिए आदत डालने के लिए भी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन ऐसा नहीं है, आपके सामने पड़ेगी फिर छोड़ देगी। ऐसी ही कुछ पाबंदी कुछ लोगों ने लगाई, तो फरमाया इन्हें हिदायत पर खड़ा करना तेरे जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे इसका फायदा खुद पाओगे, तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। यानी कोई दुनियावी मकसद और ना हो दिल में। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक मारा ना जाएगा। कितना दिल खुलता है जब बंदा ऐसी आयतें सुनता है। और ये है वो लोग जिन पे खर्च करना सबसे बड़ी नेकी है। देखिएगा, यानी वो लोग जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए डिवोट कर लिया, असाबे सुफा कह लीजिए। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हीं में से एक शख्स थे। दूर दराज से आकर अल्लाह के नबी की मोहब्बत में इल्म सीखने के शौक में आते थे। कारोबार नहीं करते थे कि कहीं इल्म का कोई एक बाप मिस हो जाए। हम कहते कोई बात नहीं, पता ही है, बाद में सुन लेंगे, टाइम नोट कर लेंगे। वो बाद की बात बाद की होती है। तो ये उठते नहीं थे एक सेकंड के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं तुम ऐसे लोगों को दो कैसे। लिल फुकराए लजीन उखसिरू फी सबीलिल्लाह, सदकात के मुस्तक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए। यानी खुद रुक गए, इन्होंने अपने ऊपर पाबंदियां लगा ली, इन्होंने खुद को वक्फ कर दिया। देखिए, अकीदे आखरत ठीक हो, फिक्रे आखरत लगती है ना, तो फिर बंदा अपनी हर चीज बल्कि खुद को भी अल्लाह के रास्ते में लगाता है कि मेरी कीमत अल्लाह से ज्यादा अच्छी कोई नहीं लगाएगा। तो ऐसे लोगों का हाल क्या है जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग इनकी बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार ख्याल करते हैं, यानी गैरतमंद इतने हैं कि सवाल ही नहीं करते। आप इनके चेहरे देख कर कयाफे से इन्हें पहचान लेंगे, वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला इसका जानने वाला है। इस आयत के साथ ऐसे लगता है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा सामने आता है। इल्म की मोहब्बत में इतना बेचैन के उठते ही नहीं थे। एक दिन बड़ी भूख लगी, बाहर आते हैं कि शायद कोई बाहर राह मिलता, मुझे अपने घर ही ले जाए। सामने से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को आता देखा। इस शौक में कि चलो मैं सवाल पूछता हूँ तो शायद समझ जाए, सूरत दाहर की एक आयत पूछने लगे कि हजरत उमर जरा मुझे इसका मतलब तो समझाएं। और उसका मफहूम क्या है कि यो तयमून ताम अला हुब्बिही, कि ये लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। हजरत उमर ने उसकी लंबी चौड़ी तफसीर बयान कर दी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं तो दिल से जानता था वो सब, लेकिन उमर मेरा मंशा नहीं समझे। हर वक्त इंसान नहीं समझने के मूड में होता। थोड़ी दूर देखा, अल्लाह के नबी सल्लम है। चेहरे से पहचान गए, तारीफू ना हो वाली बात जो अभी हमने इधर देखी कि तुम इनको इनके चेहरों से इनके क्याफों से पहचानो। क्योंकि ये मुंह से तो नहीं कहेंगे कि मुझे बड़ी भूख लगी है, अल्लाह के नबी खाना खिला दें, लेकिन आप समझ गए कि मेरा ये साथी भूखा है। उनको घर ले गए, वहां एक दूध का प्याला कहीं से आया हुआ था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मेरा दिल चाहे कि अल्लाह के नबी मुझे कहीं ये सारा पी लो। आप भी जरा इफ्तारी के वक्त की कैफियत को नोट कीजिएगा। लेकिन आपने कहा जाओ साहबे सुफा को बुलाओ। अल्लाह अकबर, इतने को बुला रहे हैं और एक दूध का प्याला। 70-80 लोग आ गए। जुरत किस में थी, उधर तो सवाल ही नहीं था अधूरी इताअत का, वो तो पूरी बात मानते थे। हम लीडरशिप की दो चार बातें मान के कहते, देखा ना, ये तो मानते हैं ना, शुक्र कीजिए, बहुत सारे तो मानते ही नहीं। चलिए ठीक है, मेहरबानी है आपकी। खैर, अबू हुरैरा के जरिए अल्लाह के नबी ने सबको वो दूध का प्याला पिलवाया और आखिर में फिर अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी ने दूध पिलाया। इतना पिलाया कि उंगलियों से भी गिरने की कैफियत हुई और सबका बचा हुआ दूध आपने पिया। इस इल्म को खाली पेट लेना पड़ेगा आपको, रोजा रखकर आप इस बात को अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, अभी तक जो कुछ सीखा, इल्मे आखरत को, यकीने आखरत समझने के फितने में मुबतला लोगों का रवैया क्या होता है। अल्लाह करे कि आप और मैं इसी में हो, कि हम सिर्फ इल्म ना रखें आखरत का, हमें यकीन आ जाए। तो पहली बात, इल्मे आखरत को जब लोग ये समझ लेते हैं ना कि हमें यकीने आखरत है, तो फिर क्या होता है, फितना बन जाती है ये चीज। पहली बात है कि देते हैं तो नीयत खालिस नहीं होती, सदका खैरात करके एहसान जतलाते हैं, तकलीफ दे बातें करके नेकियों को जाया कर देते हैं, रियाकारी मकसूद होती है, दुनियावी फवायद हासिल करने की चाहत होती है, खराब चीजें देते हैं, और सबसे बड़ी बात है देकर भी दिल की खुशी और इत्मीनान हासिल नहीं होता, बल्कि कहते हैं क्या जरूरत थी देने की, खाम खा जज्बाती हो गई, बातों में आ गई। असल में वो फिर वो फंड रेजिंग में गए थे, इतना उन्होंने मोटिवेट किया, मैंने भी $5,000 का चेक लिख दिया। जरा सा अपने ऊपर हम नजर लगाएं, अव्वल तो देना, और दे दें तो क्या बाद में कहते नहीं और हिसाब मांगते हैं किधर लगाया था, दिखाइए हमें, पूछिए जरा इनसे, पूछना चाहिए, देने वालों को तो पूछना ही चाहिए, लेकिन जो देते नहीं उनको ज्यादा फिक्र होती है, देने वाले तो कभी पूछते भी नहीं आपसे किसी बात के बारे में। तो क्या पता चला कि देना है तो अल्लाह के हाथ में, उनको दीजिए जिन पे आपको 100% यकीन हो, और बाद में जरूर पूछिए कि वो जो हमने माल दिया था वो किधर लगाया, और अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो वहीं लगा सकें जहां का वादा किया गया। और फिर उसके बाद एक खूबसूरत आयत पे इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मौजू पूरा होकर एक दूसरी तरफ जाता है, और वो है आयत नंबर 274। अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं, जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं इनके लिए इनके रब्बे ताला के पास अजर है, और ना इन्हें कोई खौफ होगा ना गमगीनी। अल्लाह हमें इन्हीं लोगों में शामिल कर ले। इन्फाक का मौजू यहाँ पूरा हुआ। आइए कुछ आदाब देखते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह के, मैनर्स ऑफ स्पेंडिंग। नंबर एक, छांट कर खराब चीज ना दी जाए, खालिस अल्लाह ही के लिए हो वो चीज। बेहतरीन चीज दें, छुपा कर देना बेहतर है। आखरत में अजर की उम्मीद हो, इन्फाक में रियाकारी ना हो। एहसान ना जताया जाए, तकलीफ ना पहुंचाई जाए। अल्लाह करे आप पे मेरे में ये बातें आए। अब यहां से दूसरा मौजू, यानी सदका या इन्फाक माल खर्च करने की बेहतरीन सूरत। उसके तस्करे के बाद आप माल की खर्च की बदतरीन सूरत, लफ्ज खुद गवाह हैं। आप अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इस आयत का तर्जुमा सुने, जो अगली इस आयत के बाद और आने वाली उनका भी, तो आपको समझ आ जाएगा कि शरीयत इस्लाम में सूद की क्या जगह है। क्योंकि कुछ चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और ये आयत ऐसी हैं। यहाँ हम इनको ही पढ़ेंगे, लेकिन ये मौजू आगे भी आएगा कुरान पाक में वक्त के साथ साथ, जहाँ आगे से आगे जाता जाएगा हम इस पर डिटेल से बात करने की पोजीशन में होंगे। हकीकत है कि आज उम्मत मुस्लिमों को जो फितने लाहक है उसमें से एक फितना सूद और इंटरेस्ट का भी है। आइए जरा आयत के तर्जमे पे गौर करें। अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल लज़ी यतखब्बतुहुश शैतानु मिनल मस। सूद खोर लोग ना खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छू कर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया इसके लिए वो है जो गुजरा, और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी ना शुक्रे और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह अकबर कबीरा। इल्मे आखरत है, यकीने आखरत नहीं, तो फिर सूद आपकी जिंदगी में आ भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इन आयात में लफ्ज़ हराम भी गुजरा, हमेशा की जहन्नुम भी गुजरी। अहल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा को नोट कर लीजिए। फमन जाहु मौइज़तुम मिन रब्बी ही, सब कुछ गुजर गया इसके बावजूद लोग कहते हैं कहाँ लिखा है। देखिएगा, फितना कर्ज, वजह दुनियावी ख्वाहिशात। आज के कर्ज जरूरियात के नहीं ख्वाहिशात के हो गए। और फितना सूद, बड़े घर कारोबार माल बढ़ाने की ख्वाहिश की वजह से आगे। हकीकत है कि जब आपको यकीन आएगा ना, और आगे जाकर इंशाल्लाह ताला इस मौजू पे चंदा हदीस सुनाऊंगी आपको, अभी चूंकि आप नए नए हैं तो अभी सिर्फ कुरान की आयत ही काफी है। लेकिन अल्लाह ने आपके मेरे लिए रास्ता फिर भी खोला है। किस बात का? तौबा का और पलटने का। फरमाइनल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान के साथ यानी सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब्बे ताला के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ होगा, ना उदासी और ना गम। आप नोट करें, जब से पारा शुरू हुआ है और खर्च करने की बातें हैं तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये है टेंशन फ्री लाइफ। आप सदका दें, दिल का बोझ दूर होगा। आप सूद के मामलों में पड़ जाएं, आप कहेंगे समझ नहीं आती, मेरा दिल क्यों परेशान है, सब कुछ है, दिल खुश नहीं। और आज यही है, हमारे पास बड़े बड़े घर हैं लेकिन खुशी नहीं है। खुशी कैसे हो सकती है? क्योंकि अल्लाह का जो हुक्म आगे भी आ रहा है, हम इसको भूल गए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर्रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, ये किसको कहा जा रहा है? आप कहेंगे वो मदीने वालों को, नहीं, अपने अपने शहर और मुल्क का नाम लेकर अपना नाम लिखिए कि अल्लाह आपको, मुझे ये जुमला कह रहे हैं। और खास तौर पे हमारे भाई और हमारी वो बहनें जो अपने मर्दों को मजबूर करती हैं कि जहां से मर्जी लाएं लेकिन आप लेकर आइए, मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो। किसी तर्जमे वाले कुरान को खोल लीजिए, आपको यही तर्जमा मिलेगा। किसी इंसान की बात नहीं है, किसी मुफ्ती किसी शेख का फतवा नहीं है, ये तो अल्लाह के नबी ने भी नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त कहा। फिर सुनिए और इसको दिल की तख्ती पे लिखिए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया वो छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। कुरान पाक में कहीं कोई ऐसा हुक्म इससे सख्त नहीं है कि फाजनु बिहर्ब मिन अल्लाही व रसूली हो। तो जब जंग अल्लाह और रसूल से लड़ी होगी तो अंदर सुकून कैसे होगा और औलादें कैसे फरमा बरदार होंगी। आज बहुत सारे मामलों में औलाद माँ बाप से डिफर करती है, वजह आपके सामने लिखी हुई है कि बहुत सारे मामलों में माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल से डिफर करते हैं। तो क्या देखा हमने कि सूदी मामला अल्लाह और रसूल से जंग है, अमाल में बदतरीन गुना सूदी मामला है, सूद के हर मामले पर लानत है। सही रिवायत है कि चार चीजों पे जिसमें सूद आ जाता है उस पे लानत है, आ की लुहू व मुंह की लुहू, खाने वाला खिलाने वाला, काती बहू व शाहिदुहू उसको लिखने वाला और उसकी गवाही देने वाला। और चौथी चीज हमने इसमें देखी कि शुबे के मामले को भी छोड़ देना चाहिए, यानी डाउटफुल है कि ये है भी इंटरेस्ट के नहीं तो छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको उससे बेहतर देगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो इसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम्हें इल्म है, और उस दिन से डर जाओ। देखिए ये हैं वो मोहरें, जब ये मोहर लगती है ना तो फिर बात भी समझ आती है, और वो क्या है, फिक्रे आखरत। आज 4 दिन के मजे उठा लिए तो कल आखरत बिगड़ गई तो क्या बनेगा। इसीलिए फरमा दिया कि अगर तुम्हें यकीन, और कहते हैं कि तरतीब के अतबार से ये आयत नजूल में आखिरी थी, वत्तकु यौमन तुरजऊना फीही इलल्लाह थुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युस्लमून, और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना किया जाएगा। फिक्रे आखरत लगा लीजिए, फिक्रे दुनिया से ज्यादा। ये दुनिया 4 दिन के मिलजुल के गुजार लेंगे, ये लॉकडाउन के दिनों में जैसे गुजर रही है, क्या जिंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती थी? अगली कितनी ही जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ जाए, और अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकाल ले जो कि बहुत बड़ी रहमत बन गई कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे सूद की बात करके अब आगे जो है वो कर्ज के लेन देन की कुछ बातें आएंगी। तो सूद क्या है? इंसानी मामलात में एक्सप्लॉयट करने वाली चीज। अकायद में शिर्क बदतरीन है, इंसानी मामलात में सूद बदतरीन है। आज भी दुनिया के 200 अमीर फैमिलीज अपनी दौलत का अगर 40% ही सिर्फ सदका कर देना फिर कमा लेंगे, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? पूरी दुनिया से गुर्बत दूर होगी, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। सूद छोड़ने के लिए पुख्ता ईमान की जरूरत होती है, जो आयतुल कुर्सी पे गौर व फिक्र से आएगा और अल्लाह के कलाम को सुनकर आना होगा। बाकी कहते हैं कि सूद और तिजारत में क्या फर्क है, मेथडोलॉजी का फर्क है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई कहे कि मजे का कोरमा आपके लिए तैयार है, खुशबू भी अच्छी, जायका भी अच्छा, टेस्ट भी अच्छा। आप पूछते हैं कि आप चिकन कहाँ से लाए थे? आप कहते हैं वो बीमार हो गई थी, मैंने कहा आपको खिला दूं। खाएंगे वो बिरयानी, वो चावल, वो कोरमा अच्छा लगेगा, बस ये फर्क है वो घर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होगी, कबीरा गुनाह है, हराम का लफ्ज है। 40 के करीब इस पे अहादीस मिलती है, कुरान में 7 से 8 आयतें हैं इसके बारे में। अल्लाह ताला हमें वो ईमान दे दे जिसके बाद इसका फायदा है। अगली आयत आयते दैन है, कुरान पाक की तवील तरीन आयत है, नमाज में भी पढ़ सकते हैं। आइए देखिए, यानी लोगों को क्यों सूद पे माल देते हो, उनकी मजबूरियां खरीदते हो, बल्कि क्या करो इसके बरक्स, तुम उनको वैसे ही दे दिया करो। किस तरह से देना, क्या करना है? या अय्युहल लजीना आमनू इज़ा तदायन तुम बिदैन, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रा पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे, कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे, जैसे अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है, बस इसे भी लिख देना चाहिए जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए, और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है और हक में से कुछ घटाए नहीं। जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवाए, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो, अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کیا سیکھا ہے 282 میں مالی معاملات کی اہمیت، قرض کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، لکھنا اور گواہ بنانا لازمی ہے، کیسے انگلی پکڑ کے سکھانے کا انداز ہے؟ تو ایک مائنڈ میپ دیکھیے گا قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات۔ پہلی بات ہے کہ قرض لیا دیا جا سکتا ہے، شرط ایک ہے، مدت کا تعین ہو، چاہے سگا بھائی بہن سے کیوں نہ لے، بات کر لیجئے کہ یہ واپس کب کیا جائے گا۔ دوسری بات ہے اس کو ڈاکیومنٹیشن میں کر لیجئے، اور تیسری بات اس پر دو مسلمان مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، کیونکہ بعد میں بدمزگیاں ہوتی ہیں۔ چلیے قرض کے بعد اب رہن کا معاملہ 283 میں، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی وہ اسے ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ آخری جملے پہ غور کر لیں تو عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کے جاننے اور اس کے دیکھنے کا احساس ہمیں سیدھا کرتا ہے۔ اور بات سمجھ نہ آئے تو آخری دو آیتوں پہ مبنی پورا رکو دل سے پڑھیے، سنیے، اللہ کے نبی رات کو بھی اس کو پڑھتے تھے، اور یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو واقعی ایمان بالآخرہ کو مضبوط کرتی ہیں، اور دل رو رو کے معافی کے لیے تڑپتا ہے کہ غفرانک للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان ساری چیزوں کو لیتا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ صرف 3 سیکنڈ سوچئے، کیا میں آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوں؟ تو کیا میں خود کو اللہ کی ملکیت میں لیتی ہوں؟ میرا مال اللہ کا ہے، میرے بچے اللہ کے ہیں، کیا میں نے اپنے بچوں کو واقعی وقف للہ کرنے کا ارادہ کر لیا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ان پڑھ رکھنا ہے، وہ بات تو پھر ہم آگے جا کے کریں گے کہ تربیت کیسی کرنی ہے کہ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین تعلیم لیں، اخلاقی اعتبار سے یہ اعلیٰ ترین ہو۔ ایک دفعہ کسی کا ان سے معاملہ پڑ جائے تو بندہ کبھی ان کو چھوڑے نہ، لیکن اللہ کے سامنے آئیں تو ایسے ٹوٹے ہوئے کہ کوئی نافرمانی نہ کر سکے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صحابہ رو پڑے، ہائے اللہ دلوں کی باتوں کو بھی لے گا۔ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا اس شخص کو جس کا ایمان بالآخرہ مضبوط ہوتا ہے، ہائے اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی ہوگا۔ ایک دفعہ لوگ اللہ کا نام لے لیتے تھے، صحابہ کے چہرے پہ آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی تھی، ہم ہنس کے ادا کے ساتھ ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، یا پھر سمعنا واسعنا؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش۔ دیکھیے ذرا طلب دیکھیے، آپ جملہ بولتے ہیں پانی دیجئے گا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ پانی مانگ رہے ہیں، اور اگر گلے میں اچھو لگ جائے تو ایک ہی لفظ نکلتا ہے منہ سے، پانی پانی پانی، ایسے خشک گلے سے۔ یہ جو غفران کا لفظ ہے نا، گرامر کی روشنی میں یہ پانی ہے کہ اللہ گناہوں کے بوجھ میں دبے ہونے کی وجہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی، کون کہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بس ایک ہی لفظ ہے، تیری بخشش، تیری بخشش۔ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ عقیدہ آخرت پختہ ہے، وہ صرف نام کا عقیدہ نہیں ہے، دلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ जब बंदा इस तड़प के साथ बोलता है तो फिर अल्लाह का जवाब सुनिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो इस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। आमीन तो बोलिए। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे, और हम पर रहम कर, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा। आयतें तो मदीना में नाजिल हो रही थी, लेकिन आज आपको मुझे दुनिया के हर खित्ते में रहने वालों को इन दुआओं को हिर्ज़े जान बनाना है। हमारी नस्लों के ईमान तभी बचेंगे जब कुफार के कल्चर से आजाद होंगे। और इन आयात के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत सुन लीजिए, 1878। जो कोई रात को सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़े, ये इसके लिए काफी हैं। किस चीज से काफी हैं? ऑफ कोर्स शैतान से, चोर से, डाकू से, लेकिन और इबादत कोई ना कर सके तो उससे भी बाकी है। तो बात क्या है? शऊर के साथ कहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमने पूरी सूरत बकरा में तकरीबन 1,000 अहकाम पढ़ा। डूज एंड डोंट्स की बड़ी लिस्टें थी जो इशारों में, किनायों में और कहीं खुल खुल के मिली। दुआ कीजिए कि अल्लाह इसमें जो भी मेरे अंदर है उसको माफ कर दे। और फिर सूरत आले इमरान शुरू करते हैं। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से तीसरी बड़ी सूरत, 200 आयात हैं। सूरह बकरा और आले इमरान में रब्त भी बड़ा खूबसूरत है। दोनों अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं, दोनों के आखिर में दुआ है। और दोनों को जमा कर लीजिए तो बातिल लोग और जादू टोना करने वाले इस किताब नहीं लाते। सूरत का नाम आले इमरान, इमरान के घर वाले, एक ऐसे घराने की बात है इस सूरत में कि जिस के साथ ताल्लुक जोड़ने वाली आज दुनिया में अक्सरियत है। और सूरत आले इमरान, इसकी शान नजूल और इसका वाकया, ये सब कुछ हम जब हदीस से पढ़ते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लम से ज्यादा मामला फहम लीडर कोई नहीं था। नजरान से आए हुए एक वफद के सामने इसकी कुछ आयात नाजिल होती हैं। इस सूरत में इसमें आजम भी है। अभी इब्तदाई दूसरी आयत में अल हय्युल कय्यूम, जो आयतुल कुर्सी में भी गुजरा पीछे, इसके बारे में उलमा का ख्याल है कि ये इसमें आजम है। और इसी तरह सूरह तौहा की एक आयत है। चार मजामीन है इस पूरी सूरत के। तरतीबे कुरान मजीद में ये तीसरी सूरत है, मदीने में नाजिल हुई। आगाज़े सूरत से चौथे रकू की इब्तदाई दो आयात तक है। दूसरा हिस्सा अम्बिया की रिसालत से छठे रकू के अख्तिताम तक है। तीसरा हिस्सा सातवें रकू के आगाज से 12वें रकू के अख्तिताम तक। और चौथा हिस्सा 13वें रकू से सूरत के अख्तिताम तक। यानी आप चार बड़े बड़े मजमून इस एक सूरत में पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका निगेबान है, जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। इसी ने इससे पहले तौरात और इंजील को उतारा था, इससे पहले लोगों को हिदायत करने वाली बनाकर, और कुरान भी इसी ने उतारा, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं इनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ताला गालिब है, बदला लेने वाला। यकीनन अल्लाह ताला पर जमीन और आसमान की कोई चीज पोशीदा नहीं। वो माँ के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो गालिब और हिकमत वाला है। लिहाजा आज के बाद कभी अपनी सूरत को बुरा ना कहिए। नाक मोटी इसलिए कि अम्मी की मोटी थी, रंग काला इसलिए कि अब्बू काले हैं। तो ये शक्लों को डिस्कस करना अल्लाह के इस आर्ट वर्क पे बात करना है। आज ये भी एक फितना है उम्मत के अंदर, और इसी पे माल लगने लग गया। कॉस्मेटिक से नाम पे, और कह लीजिए कि कई किस्म की सर्जरियों के नाम पे लोग अपने फीचर्स भी बदलाने लगे। याद रखिए कि फितना बन जाती है वो खूबसूरती कि जिस पे वक्त भी लगे, माल भी लगे, फिर भी आप मुतमईन नहीं हैं। जन्नत में औरतें बहुत खूबसूरत होंगी, मर्द बड़े हैंडसम होंगे। फिक्रे आखरत लगा लीजिए तो वो वक्त और वो माल जो सिर्फ शक्लों को बेहतर करने में और उसके नक्श निकालने में लगता है, उसको अल्लाह के रास्ते में लगा लीजिए। और आप देखेंगे सूरह आले इमरान दुआओं से भरी हुई सूरत है। तो हर दुआ पे आमीन कहिए, अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन सारी चीजों को आसान कर देंगे। وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ آیتیں بھی ہیں، بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی شبہ والی آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور اس کی مراد اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو دراصل صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے اور ادھر ادھر کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسا ہی معاملہ آتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑتے ہیں۔ پھر یہاں دیکھیے کہ فتنے کا لفظ گزرا ہے، اور یہاں فتنہ کفر کے معنوں میں ہے۔ دلوں کا روگ فتنہ بڑھا بھی دیتا ہے، اور کس طریقے سے یہ آزمائش بن جاتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ ہمیں ان آیتوں کا انکار کرنے اور کفر کرنے والا نہ بنائے۔ تو لکھ لیجئے کہ اس یعنی آل عمران 7 میں فتنہ بمانی کفر کیا گیا۔ دوسری بات اس سے کیا پتہ چلی کہ عقل مند لوگوں کو صرف ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے رب ہمیں مزید علم بھی دے، اور آپ جو علم دے چکے اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں عقل مند لوگوں میں کر دے، اولو الالباب میں شامل کر دے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کی حدوں کو جان لے۔ تو یہاں ایک مائنڈ میپ دیکھیے، راز سے خون یعنی رسوخ حاصل کیے ہوئے لوگ علم ہے، محکم یعنی حکم والی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، سیدھی سیدھی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی اور حکمی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، تو وہ ہمیشہ متشابہ آیتوں میں آئیں گے، یہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، یہ لوح قرآنی ہے، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنے آئے ہیں، ہدایت لے کر جائیں ورنہ بھٹک جائیں گے۔ تو دو طرح کے لوگ، دو طرح کی آیات، دو طرح کے مقاصد سے پڑھنے والے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک مائنڈ میپ دیکھ لیجئے کہ شبے والی آیتوں پر ایمان لائیے، ان کی تعویل سے باز آئیے، حکم والی آیتوں پر عمل کرتے جائیے، آیات پر عمل کے لیے قرآن و حدیث اور اسلاف کی مثالیں سامنے رکھیے، اور شبہ والی آیتوں کو من پسند مفہوم پہنانا یہ فتنہ ہے، اس سے بچیے، اور دل کے ٹیڑھ پن سے بچنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایمان والے کو، عقل والے کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہدایت کی دولت ملنے کے بعد چھن نہ جائے، جیسے کسی کو گاڑی ملنے کے بعد اس کے چھننے کا خوف لگ جائے، اس سے زیادہ فکر لگ جاتی ہے اس بات کی کہ اے مالک مجھے بچا کے رکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 45-47، جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو شبہ والی آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، اس لیے ان سے بچتے رہو۔ تو قرآن کی تفسیر کرتے سنتے وقت بھی ان چیزوں کو سامنے رکھیے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 28 میں جو کچھ پڑھا، اس کو ایک مائنڈ میپ کی صورت میں دیکھ لیجئے، کی پوائنٹس ہیں یہ آپ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، خود ساختہ عقیدہ آخرت نہیں نبھانا۔ آگے آیتیں آ رہی ہیں، اس سوچ کے ساتھ سنیں گے تو فائدہ ہوگا۔ قتل انبیاء اور علماء سے بچنا، نعمتیں جو مل جاتی ہیں اس کا صحیح استعمال کرنا، حب الشہوات میں نہیں کھو جانا، علم آ جانے کے بعد اختلاف نہیں کرنا، اور غیروں سے دوستی نہیں کرنا۔ اس شعور کے ساتھ اب اگلا حصہ سنیے کہ اللہ ہدایت کی اس دولت کو ہم سے دور نہ کرنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ایسے لگ رہا اندر تڑپ ہے، انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ خود سے پوچھئے کیا مجھے بھی آخرت کی اتنی فکر ہے؟ کیا واقعی شعوری طور پر مانگی ہوئی دعاؤں میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا؟ اے ہمارے رب، دوبارہ اپنے لیے مانگیے، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایک مائنڈ میپ دیکھیے گا، اولاد اور مال کو وقف لے دنیا کرنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیا چیز سمجھ آئی؟ قیامت کا آنا برحق ہے، علم آخرت کو یقین آخرت میں بدلنے میں ہی بقا ہے، کافروں کی اولادیں اور مال آخرت میں کام نہیں آئیں گے، اور دنیا میں مال اور اولاد کو وقف للہ کرنا اصل میں آخرت کمانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات میں جو فتنے کی بات ہوئی تھی تو فتنہ پیدا کرنے پر طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں فتنے کا مفہوم قرآن و سنت میں سمجھنا چاہیے، محتاط طرز عمل اپنانا چاہیے، عبادت زیادہ سے زیادہ کیجیے اور حکمرانوں کی جائز امور میں اطاعت کیجیے، زبان اور قلم کو مکمل کنٹرول میں رکھیے، سرگرمیوں کو محدود رکھ دیں تو اس طرح کے فتنے نہیں آئیں گے جس کا امت شکار ہے. اور ایک بار اس شعور سے دعا مانگ کر آگے چلتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اب آگے کچھ لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم کے بعد کداب آل فرعون. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا آل فرعون کا ہوا اور جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایک اور مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے. فکر آخرت ہو تو زندگی قرآن کے مطابق ہوتی ہے. قرآن الفرقان ہے، علم آخرت کو یقین آخرت میں ڈھالنے کے لیے رب کا بہترین تحفہ ہے. قرآن کو زندگی میں لے آئیے، آخرت کی فکر لگ جائے گی. اب یہاں سے غزوہ بدر کی طرف چند اشارے ہیں. قد کان لکم آیتن فی فئتین، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھت گئی. ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. اللہ ہمیں اپنے ہی گروہ میں رکھے. زین للناس حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے کیٹلز اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. فکر آخرت کو مضبوط کیجیے. یہ دنیا تھوڑی ہے، اسی شب و روز میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اسی لیے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. کون سے بندے؟ جن میں کچھ خوبیاں ہیں. کون سی؟ الذین یقولون ربنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آمین کہیے. ان کی خوبیاں صرف دعائیں نہیں، عمل بھی کرنا پڑے گا. پہلی خوبی جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے. آج کل اگر کسی نے پچھلی رات میں دعائیں نہیں مانگنی تو کب مانگنی ہے؟ اس سے مراد ہے تہجدوں کے وقت بخشش مانگنے والے. اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے، عمل کرنا اس پہ انشاءاللہ تعالی. اگلی آیت میں علم والوں کی خوبی. کوئی اور آیت نہ بھی ہوتی نا علم کی شان میں تو یہ آیت 18 کافی تھی کہ جہاں اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ راسخون نفع علم کی بات کی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن پاک میں توحید کی سب سے بڑی شہادت ہے اس ایک آیت میں. اللہ تعالیٰ خود کلمہ پڑھتا ہے، یہ کہہ لیجئے. اللہ خود کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں، اور یہی شہادت آج تقریباً 2 بلین مسلمان بھی دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی زبان اور ان کے دلوں میں مطابقت ہونے لگے. حب الشہوات، کیوں اور کس لیے؟ آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک لمبی لسٹ پڑھی. اللہ نے کیوں دلوں میں محبت ڈالی ان چیزوں کی؟ سوال ہے خود سے. تو پہلی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس دنیا میں آخرت کا تعارف ہے، تاکہ دنیا کا کام چلتا رہے. ورنہ آپ دیکھیے، باپ کو محبت نہ ہو تو کیوں محنت کرے، ماں کو پیار نہ ہو تو کیوں پکائے. تو ہمارے لیے فتنہ امتحان کے معنوں میں ہے، اس دنیا کی زینت ہے اور اس کے ذریعے میں آخرت کمانی ہے. फिर कायनात के अदल की बात हुई तो कायनात अदल पे है। हमें खुब्बु शहावात में भी अदल करना है, यानी कुछ स्टेप्स हैं हमारे सामने। पहले इल्मे आखरत हो, यकीन आखरत में ढल जाए, फिर उसके बाद फिक्रे आखरत लग जाए। जब ये तीन काम होते हैं ना, तो फिर हुब्बु शहावात में अदल आ जाता है और फिर आमाल साले होने लगते हैं। फिर आप देखिए कि दुनिया की मोहब्बत जो है ना, ये ख्वाहिश है, और ख्वाहिश परस्ती फितनों की जड़ है, ये जम है। ख्वाहिशों पे पाँव रखिए, फितने खुद ही दब जाएंगे। जैसा आखरत पर यकीन, वैसी ही ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात इंसान को उड़ा कर गुनाहों और फितनों में मुबतला कर देती हैं, और हुब्बु शहावात में अदल ना करने से इंसान मकसद हयात से गाफिल हो जाता है, और ख्वाहिश परस्त इंसान का अंजाम हाविया है, हवा से, सबसे गहरी जहन्नुम का ये नाम है। इस पे गौर व फिक्र करते हुए अगर आप और मैं अपने बारे में एक इरादा और एक नीयत कर लें कि मालिक हमने इन फितनों में नहीं कूदना, और देखिए कि यहाँ तक जो बात की है ना, इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए एक नीयत कीजिए कि अल्लाह, जब तूने नबी के उम्मती बना ही दिया तो क़यामत के दिन भी उसी कतार में खड़ा करना। उस पे गौर कीजिए। यहाँ तक आज हम रुकेंगे। अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो आपने देखा होगा, पहले 2 दिन में हमने आधा आधा पारा किया, तीसरे दिन में हमने पौन यानी 1/3 पारा किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पारा पूरा कर लिया। चंद दिन बाद आप पारा टू पारा चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं पारा एंड तक क्यों नहीं गया, तो मैं यही कहूंगी, अब मुझे तो नहीं किसी ने कहा, लेकिन अगर कोई सोचता है, रस्मी रिवाजी अंदाज भी तुम्हारा दौरे कुरान है ना, और उसमें एक पारा रोज का हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन फिर इतने थीम और इतने मैप साथ नहीं चल सकते। बात ये है खत्म नहीं करना, और कई लोग तो रमजान से पहले ही शुरू करते हैं, वो तो पूरा रमजान में हुआ भी नहीं, तो बात यह है कि लेने पे लीजिए। और इस साल तो मुझे लगता है कि अगर आपको मैंने वादा ना दे दिया होता कि ये फ्लायर पे ये डेट्स लिखी हैं, तो शायद मैं 2 महीने का पारा चलाऊं और पूरा दौरे कुरान आपका चलता जाए, कि जब तक घरों में बैठे इसको सुनते रहे। खैर, ये तो चंद बातें ही हैं, आप जो कहेंगे मैं तो उसी पर राजी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको मुझे मुसलमान बनाया, इतनी प्यारी आयतें कुरान की दी। कल से हम इस्लाम के बारे में बात शुरू करेंगे, आयत 19 से आगे जो सूरत आले इमरान का हिस्सा है, इसका मेन थीम इस्लाम है, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।